अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा।
तो इससे ध्यान रहे कि सब बीमारी अगर आपको चाहिए तो आउटर सेल्फ कॉन्शियस हो जाओ, जो हम ऑलरेडी आधा क्लब से हुई रहे, बॉडी रोल मटेरियल कॉन्शियसनेस। इसलिए आज हम सभी बीमार हैं, सभी दुखी हैं। आज का इंसान, हर इंसान बीमार है, हर इंसान दुखी है, और इसका इलाज क्या है? इनर सेल्फ कॉन्शियस बनना, माना अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होना, इसका ये इलाज है। जितना अपने को आत्मा समझ का अभ्यास करते जाओगे अपनी आत्मिक स्थिति का, और उसका एक ही तरीका है, परमात्मा की याद के द्वारा ही आप अपने को आत्मा समझ सकते हो ना। मैं इसके लिए छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको, है ना, वो इससे आपको समझ में आएगा कि हमारी क्या हालत है ना। एक सेठ था, कहीं का समझ सकते, कानपुर का समझ सकते हैं, इलाहाबाद का समझ सकते हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि उनके यहां, मतलब वो सेठ जो था बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, तो उसकी पर उसको बच्चे नहीं होते थे। सेठ 45 साल का हो गया, पत्नी 40 साल की हो गई, बहुत इलाज कराए, बहुत इलाज कराए, बच्चे नहीं हुए। बहुत जगह गए ना, मतलब होते ना, कई साधु संतों के पास गए, कई मान्यता है उन्होंने की, पर उनके बच्चे नहीं हुए। तो आखिर में किसी ने, मतलब कोई बात हुई, उन्होंने मन में कोई मानता माना, कोई अपने अंदर से कोई ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा की कि हम ये करेंगे। तो क्या हुआ, उनका 41-42 साल की उम्र में उसकी वाइफ को बच्चा हुआ, लड़का हुआ। तो उन्होंने कहा था कि जब बच्चा हमारा पैदा होगा तो उसको हम, जब वो कुंभ का मेला होगा ना, तो उस समय जाके बच्चे के बाल कटवाएंगे पहली बार। तो कुंभ का मेला आया, दो तीन साल की उम्र में जब बच्चा 3 साल का हो गया, तो उसको कुंभ के मेले में ले गए, तो उसके बाल कटवाए, बाल काट के गंगा जी में डाले, है ना, डाल के और उसको हरिद्वार में लेके गए, उसको हरिद्वार में, और उसको फिर बाल काट के वहां डाले। बच्चा बहुत चंचल था तो 3 साल का, किंतु चंचल बहुत था। चंचल होते ना बच्चे, 3 महीने से यहां भागते रहते कभी कहीं कभी कहीं, तो माँ का हाथ छुड़ा के भाग गया कहीं पर ना उस समय, और बच्चा खो गया। तो कैसे, गर्मा तो कुंभ था, तो बहुत लोग, लाखों लोग आए हुए थे, तो किसी गलत लोगों के हाथ में पड़ गया। जो चोर थे, चोर होते हैं, जेब कतरे होते हैं, चोरी करते हैं, उनके हाथ में बच्चा पड़ गया। तो उन्होंने बच्चे को सब कुछ सिखा दिया, चोरी करना, जेब काटना, सब कुछ सिखाया, भीख मांगना सिखा दिया। अब बच्चा भीख मांगता था, चोरी करता था, जो पे करता था, पैसे ला करके वो जो था ना उनका बॉस था ना, उसको ला के दे देता था, उसका रुखा सूखा खाना दे देता था। बच्चा बड़ा होता गया, पर उसकी जो माँ थी वो तो हार के चली गई, मतलब सेठ और सेठानी अपने घर चले गए और जाकर के वहां रहने लगे। पर बच्चे की मां जो थी उसके मन में हमेशा बच्चा घूमता रहता था, क्योंकि एक बच्चा था बहुत प्यारा था और उसको उसकी याद हमेशा आती थी। तो उसने उसमें टीवी में निकाला, अखबार में निकाला, सब जगह सब कुछ कोशिश किया, किंतु बच्चा उनको मिला नहीं। तो पर वो बच्चे, वो क्या करती है, हर साल अपने बच्चे का जन्मदिन मनाती थी, क्योंकि बच्चा तो था, जिंदा तो था, उसको पता जिंदा है कहीं ना कहीं, उसको पता था इतने साल का हो गया, आज इतने साल का हो गया, तो उसके कपड़े भी बनाती रहती थी, हर साल नए कपड़े बनवाती थी, है ना, दो तीन जोड़ी हम हर साल नए बनवाती थी, और उसके लिए बकायदा रखती थी कि बच्चा कभी भी आएगा उसके कपड़े तैयार होने चाहिए मेरे पास, है ना। आज 6 साल का हो गया तो 6 साल के हिसाब से कपड़े बनवाए, 8 साल का हो तो 8 साल के कपड़े बनवाए, 10 साल का 10 साल के कपड़े बनवाए, 11 साल का 12 साल का, जैसे भी उम्र के हिसाब से बच्चे बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से, उस साइज के हिसाब से लगभग कपड़े बनवाते, और हर बच्चे में अपना बच्चा ढूंढती थी। उसके बच्चे का बचपन का ही निशान था बाएं बाजू पे, ये रियल स्टोरी है वैसे तो, बाएं बाजू पे निशान था बच्चपन का, एक मार्क होता ना, बर्थ मार्क होते ना, तो मार्क था। तो वो ऐसे बच्चे की, मतलब बच्चा उसकी उस उम्र का दिखाई देता ना, 6-8 साल का, तो आप कई बार बच्चे के ना वो शर्ट ऊपर करके ना उधर निशान देखती थी, ये मेरा बच्चा तो नहीं है, कहीं उतनी उम्र का ही है, कहीं बाई चांस मेरा बच्चा तो नहीं है। इवन भिखारियों को भी देखती थी, चेक करती थी कि मेरा बच्चा कहीं खो गया हो, किसी ने उठा लिया हो, तो शायद वो कहीं घूम रहा हो ऐसे ही, तो सबकी चेक करती रहती थी। तो एक दिन वो बच्चा क्या किया, वो बच्चा तो मतलब कई बार वो पकड़ा भी गया, पुलिस ने पकड़ के बाल सुधार गृह होते ना वहां भेज दिया, फिर थोड़ी देर में छोड़ दिया, फिर वो बच्चा फिर वही काम, चोरी करना, जेब काटना, ऐसे ही कभी खाना खाना कभी नहीं खाना, ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। तो एक दिन बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा जैसे वो किसी ट्रेन में बैठ गया और बाई चांस जहां उसके माता पिता रहते थे उसी शहर में जाके ट्रेन से उतर गया, है ना। उसको पता नहीं था क्योंकि वो तो हर आदमी को अपना बाप समझता था, हर औरत को अपनी माँ समझता था, है ना। जैसे जो माँ होगी कई बार उसको बाप, माई बाप बोलता, कभी कुछ बोलता, कभी खाने को बोल भीख मांगता था बेचारा, पता ही नहीं था, अपने को भिखारी समझता था, सोचता था मेरे माँ बाप कोई होंगे, दूसरे के बच्चों को देख करके सोचता था मेरे भी कोई माँ बाप होंगे, मुझे भी कभी प्यार करते, उस अपने माँ बाप की शक्ल याद भी नहीं थी उसको। तो बच्चा एक दिन अपने वो शहर में उतर गया और वहां जाकर के भूख लगी थी, कई दिन से खाना नहीं खाया था, तो मांगता था, कई दरवाजों पे गया, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। अभी 12 साल का हो गया था और वो बच्चा भीख मांगते मांगते अचानक क्या हुआ, अपने ही दरवाजे पे पहुंच गया, बता उसको नहीं पता है मेरा घर है, अपने दरवाजे पे पहुंच गया। उसने कहा, आवाज लगाई कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने, एक नौकर बाहर निकला, उसने भाग जाया यहां से, चल मांगने आ जाते हैं, यहां कुछ नहीं मिलेगा, बेचारा फिर भी खड़ा रहा। फिर दूसरा नौकर ने आया, दूसरे नौकर ने डांट मारी, भाग जाया यहां से। तीसरा नौकर आया, उसने डांट मारी। अचानक उसकी माँ जो थी ना, अचानक उसकी माँ किसी काम से अपने घर से बाहर निकली और उसकी शर्ट वहां से फटी हुई थी, बाल भी सब बिखरे हुए, गंदा सा मुंह था, गंदा काला, कितने दिन से नहाया नहीं था, सब गंदा मुंह था एकदम से पूरा। तो उसकी माँ, ऐसे बच्चा खड़ा था ना इस दरवाजे के पास, तो जैसे उसने दूर से ही देखा अपनी उस माँ को, उस औरत को देखा, तो उसने कहा कि माई माई मुझे भी, मेरे को 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। पर उसकी माँ की नजर कहां पड़ती थी हमेशा, हर बच्चे के बाएं बाजू में पड़ती थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे बच्चे के यहां निशान है, उस बच्चे के निशान था। तो उसने जैसे ही उसके निशान देखा, तो ना उसने मुंह देखा ना कुछ देखा, उसको चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया। और उसको ऐसे, उसके तो कीमती कपड़े थे, बहुत अच्छे कपड़े थे, उसके तो कपड़े क्या थे, फटे सारे कपड़े थे, नहाया भी कितने दिन से नहीं हुआ। तो वो उसने उसको ऐसे करके गोदी, मैं तो उसको जैसे उसका अपनी भाकी पहनी, है ना, और उसको लेके तुरंत अंदर लेके चले गए, मेरा राजा बच्चा करके अंदर ले गए, और ले जाके उसको कपड़े तो उसको नहलाया धुलाया, खूब रगड़ रगड़ के नहलाया, खूब साबुन लगाया, खूब शैम्पू लगाया उसको, ना सारे बाल बाल सब ठीक कर दिए और सब नहला धुला के साफ सब स्वच्छ बना के, कपड़े तो उसके पास तैयार ही थे, है ना, 12 साल वाले कपड़े भी तैयार थे, है ना। तो उसको कपड़े उसको पहनाए, है ना, और पहना के फिर उसके 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 अपने उसके पति को बुलाया, अपने पति को बुलाया, देखो हमारा बच्चा मिल गया। कहता कैसे कैसे तुम्हारा बच्चा है ये, देखो ना इसका निशान खोल के दिखाया, देखो ये निशान, यही तो है वो निशान। तो बच्चे का मतलब वो देखा सारा कुछ, तो हाँ उसको भी विश्वास हुआ कि हाँ ये बच्चा वही बच्चा है, है ना। तो फिर पति ने क्या किया, फिर उसको सोफे बिठाया, सारे नौकरों को बुलाया, देखो ये तुम्हारे छोटे मालिक है ना। अब जो नौकर कह रहे थे ना भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा कुछ नहीं मिलेगा, अभी क्या बोल रहे, छोटे मालिक बोल रहे ना उसको, नहीं बोल रहे। अब वो बच्चा ऐसा कभी करेगा कि नहीं, अभी 2 दिन के बाद घर में रहेगा, 2 दिन के बाद कहेगा मम्मी, जो उसकी माँ है, नहीं मम्मी मेरे को ना कई दिन, मैं सालों से भीख मांगता रहा हूं ना, अभी वापस कटोरा ले दे, मैं कटोरा लेके जाता हूँ, थोड़ा भीख मांग के लाता हूँ, जेब काट के लाता हूँ, 2-4 लोग, ऐसे करेगा क्या, नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है ना, हम द्वापर युग में बिछड़ गए, है ना, भगवान से बिछड़े ना, तो हम भूल गए हम किसके बच्चे हैं, और ऐसे क्या बन गए, भिखारी बन गए ना, कभी राम के पास, कभी कृष्ण के पास, कभी हनुमान के पास, कभी शेरावाली माता के पास, कभी वैष्णो देवी के पास, कभी गणेश के पास, कटोरा लेके घूमते रहे, है ना, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कुछ देगा, दिया किसी ने कुछ, सब कहते भाग जा भाग जा भाग जा, नहीं कमा के खाओ, ऐसे को ऐसे को कमाई मिलती है क्या, नहीं ऐसा किया नहीं किया। और फिर एक दिन किसने पहचाना, हमने पहचाना कि बाप ने पहचाना, बाप ने हमको पहचाना, और बाप ने पहचान के हमको क्या किया, अपने गले लगाया, है ना, हमारा नाम भी बदल दिया, पहले हम कौन थे, मनुष्य, अभी क्या बना दिया, ब्राह्मण, मनुष्य माना मन के वश में, जिसका मन राजा है, और अभी हम क्या बन गए, अभी हम बन गए, हमारी बुद्धि राजा है, ब्राह्मण माना ब्रहा, ब्रहा माना बेहद, जिसकी बेहद की बुद्धि है, बेहद की बुद्धि में जिसमें बेहद बेहद ज्ञान भरा हुआ है, एबीसीडी भरा हुआ है, ये मुरली भरी हुई है, ऐसी बुद्धि के हमको बना दिया। अब बाबा ने कार्य क्या दिया, बच्चे इस बेहद की बुद्धि को यूज करके अपने मन के हर विचार को परिवर्तन करो, हर भावना वृत्ति और स्मृति को परिवर्तन करो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, इसके अनुसार ही कर्म करो, इसी बुद्धि और मन को यूज कर कर्म करो, अर्थात अपने संस्कारों को बदलो, ये हमको कहा। ठीक है, अभी हमको ये याद रखना है कि हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, या बार बार बीच में लगता है कटोरा लेके जाऊं थोड़ी देर, जेब थोड़ा जेब काट के लाऊं किसी की, ऐसा लगता है क्या, याद तो आती होगी ना, याद। ऐसी एक बात मैं और बताता हूं आपको, एक बार क्या हुआ, मैंने बताया था लास्ट टाइम शेयर में, जब पिछली बार आए थे बताया था आपको, एक आदमी था वो, उसको भूख लगी थी, बाजार में से निकल रहा था ना, तो बाजार में से निकल रहा था, उसको भूख लगी, वो था 17-18 साल का लड़का था, तो उसने एक आदमी से कहा, सब बाजार में से जाते टाइम उसने कहा, भाई मैं 3-4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो, है ना, याद है, तो उसने कहा कि भाई तुम टमाटर खाओ, और साथ में टमाटर, एक आदमी टमाटर बेच, रेड़ी थी ना, टमाटर की रेड़ी लगी हुई थी, तो उसने कहा ये टमाटर खाने के लिए कह रहा है, तो मैं टमाटर वाली दुकान पर चला गया, टमाटर की रेड़ी पर चला गया, उसने कहा भाई मैं 3-4 दिन से भूखा हूं, भाई साहब मुझे ये टमाटर भीख में दे दो, मैं टमाटर दे दो, मैं टमाटर ही खा लूंगा। उसने तेरे किसने कहा, उसने सोचा टमाटर वाले ने, मैं इतने साल से टमाटर बेच रहा हूं, किसने आज तक टमाटर भीख में नहीं मांगे, तो उसने कहा किसने कहा टमाटर मेरे से मांगने के लिए, उसने कहा ये आदमी खड़ा ना, इसने मेरे से मांग, इसने कहा टमाटर खाओ, तो मैंने कहा मैं आपके पास आ गया, उसने कहा वो तोतला आदमी है, वो का को टा बोलता है ना, है ना, क्या बोलता है, कै को टा बोलता है, तो आप टमाटर खाना शुरू किया ना कि अभी 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 कटोरा लेके घूमते हो, हमें उठते ही टमाटर खाना है, सुना, अमृत वेला का मतलब क्या है, टमाटर खाना, ठीक है, क्या कटोरा लेके दुनिया में लोग, हम पहले मनुष्य थे ना, तो टमाटर हम क्या करते थे, कटोरा ऑन कर देते थे, राम के सामने टमाटर कटोरा, चलो तुम नहीं देता कोई बात नहीं, कृष्ण के सामने, कृष्ण भी कहता नहीं देता, अच्छा हनुमान के सामने, हनुमान नहीं देता चलो कोई बात नहीं, गणेश के सामने, है ना, अच्छा हनुमान गणेश में देता चलो वैष्णो देवी के सामने, है ना, अंबा जगदम्बा के सामने, किसी ना के सामने कटोरा हमेशा ही ऑन रहता था, नहीं, और रिश्वत देते थे कि तू मेरा काम कर दे तेरा 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, जैसे महंगाई बढ़ती गई तो रेट भी बढ़ता गया ना, नहीं ऐसा, ऐसे थे ना पहले, तो अभी क्या करना है, टमाटर खाना है कि वो गीत, वो वाला आंखें आंखें फिल्म का गीत था ना, एक आंखें फिल्म का कौन सा गीत था, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह देवे, सुबह से हो गई शाम तुमको अल्लाह रखे, हम कौन से फकीर हैं, इंटरनेशनल फकीर आए हैं ना, है ना, इंटरनेशनल फकीर हो गया, अभी फकीर नहीं हो, भिखारी नहीं हो, अभी क्या बन गए हो, अधिकारी बन गए हो, क्या बन गए हो, अधिकारी बन गए हो ना, हाँ जी, यस, है ना, जेब में हमारे पैसे थोड़ी ना होते हैं, जेब तो खाली है पूरी, पर हम मालिक बनने वाले ना विश्व के, पक्की गारंटी है, हम सबसे बड़े सेठ के बच्चे हैं, सुना कि सबसे बड़े सेठ के बच्चे हैं, ये नशा रहना चाहिए, ये ब्लॉकेज तो कुछ भी नहीं है, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या मुकेश कुमार, क्या ख्याल है, नशे में रहा करो ऐसे ना, बीमारी क्या कर लेगी आपको, कुछ नहीं कर लेगी, लोग मरने से डरते हैं, हम तो पहले ही मरे पड़े हैं ना, नहीं, नहीं, वो डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया, हम तो हमने डर गए, हम मर गए पुराने जीवन से, अभी पुराना जीवन हमारा है ही नहीं, अभी नया जीवन है, हमारा नया जन्म हो गया ना, अभी हम ब्राह्मण बन गए, कौन बन गए, अभी हम ब्रह्मा हमारी माँ है और शिव बाबा हमारा बाप है, और दस है जी, 3 महीने के बच्चे हो ना, तो देखो ना, और दशा हमारी क्या थी, पहले राहु की दशा, शनि की दशा, शुक्र की दशा, अभी सिर्फ बृहस्पति की दशा, ठीक है, जन्मदिन याद है आपको अपना, कौन सी तारीख थी, 20 अप्रैल को ना, कितने बजे पैदा हुए थे, नोबिस पे, ठीक है। तो अब याद रखना, मनाना है अगले साल अप्रैल में, फिर बर्थडे आएगा ना आपका, 9:20 पे मनाना रात को, है ना। नहीं तो हमारे सब शिवा, हमारे सब दिल वालों का एक जन्मदिन है अलग से, नया जन्म होता है इनका, तभी हम पहली पहली बार मनाते हैं। सभी एक साथ पैदा होते हैं, 50-60 दिल वाले एक साथ ही पैदा हो जाते हैं, एक साथ इनका बर्थडे, एक साथ इनका मनाते हैं ना, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमारा अभी तक ये था जीवन, ऐसा था, अभी हमारा जीवन ये फर्नेस के समान, जहां गर्मी अपने आप लगती है, आग लगती है, गर्मी लगती है, यहां पर ठंडक अपने आप लगती है। तो ये है नरक, नरक माना ना अरक, अर्थात जिस जीवन में आत्मा, जो हम मैं आत्मा हूं, इसमें आत्मा का कोई अरक नहीं है। अरक माना इसेंस नहीं है। आत्मा का इसेंस क्या है? 7 गुण, ज्ञान, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये आत्मा का अरक है, राइट। तो ये आत्मा का अरक है, और इसमें कोई भी आत्मा का ना आत्मा का ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सुख, ना आनंद है, ना शक्ति है कोई। जीवन एकदम रौरव नरक, रौरव नरक माना जिसमें इसका अंश भी नहीं है, ना शांति का अंश, प्रेम सुख आनंद का अंश भी नहीं है, राइट। रौरव है एकदम, अंधेरा है एकदम। और ये जो है स्वर्ग, स्व माने आत्मा, अर्ग, जो 7 गुण है ना आत्मा के, इनसे जो मिश्रण से जो क्या बनता है, दैवी गुण बनते हैं। जो अरक होता है ना, मैं समझता हूं आप में से कोई पुराने आदमी है होंगे तो उनको पता होगा, शायद मारूराम आपको पता है अरक किसे कहते हैं। जो अरग होता है ना, उस अरग से, अरग से फिर अरग बनता है, अरग से अरग बनता है। जैसे शहद होता है ना, शहद, मक्खियां शहद बनाती हैं, और फिर शहद की फर्दर उसका 100 ग्राम शहद से 1 ग्राम रॉयल जेली बनती है। क्या बनती है? 100 ग्राम शहद से 1 ग्राम रॉयल जेली बनती है, और रॉयल जेली ऐसी होती है जो आदमी को रिजुविनेट कर देती है, मतलब बूढ़े आदमी को जवान बना दे। पहले जमाने में राजा लोग खाते थे, राजा लोग होते थे ना, राजा लोग जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे वो खाते थे। आजकल तो बनती भी नहीं, मिलती भी नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे रॉयल जेली बनाई जाती थी जो शहद से बनाई जाती थी, है ना। शहद में से फिर वो उसको पूरा वो करके उसका अलग से अरग निकालते थे। तो अरग माना जिस स्व माने आत्मा, आत्मा जिसमें, जो आत्मा के अरग से भरपूर है, ये नरक माना जिसमें अरग नहीं है, जिसमें आत्मा का कोई भी ज्ञान, पवित्रता, शांति नहीं है। और जो दुनिया या जो आत्मा के दैवी गुणों से भरपूर है, उसे कहते स्वर्ग, राइट। अभी हमको क्या करना है? सबसे पहले अपनी बुद्धि को, अपने मन को, और स्वर्ग जो संस्कार है वो नरक बन गया, उसमें कोई भी आत्मा का ना बुद्धि में, ना मन में, ना संस्कार में कोई भी आत्मा का इसेंस नहीं रहा है। सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बाल बच्चे भरे हुए हैं। गलत खान पान, गलत नींद, गलत सैर, गलत व्यवहार, गलत आहार, गलत विहार, सब कुछ गलत है। और स्वर्ग माना अभी मेरी बुद्धि में, सबसे पहले अपने बुद्धि को स्वर्ग बनाना है, अपनी बुद्धि में 7 एनर्जी भरनी है, अपनी बुद्धि में ये दैवी गुण भरने हैं, फिर अपने मन के हर विचार में भरने, हर भावना में, हर वृत्ति, हर स्मृति में भरने, और फिर अपने संस्कारों में भरने, और फिर अपनी कर्मेंद्रियों में भरने, आंखों में भरने, नाक में, कान में, मुख में, स्किन के एक एक रोम रोम में भरने हैं, ये दैवी गुण, 7 एनर्जी और दैवी गुण। तो स्वर्ग पहले अपने अंदर स्थापन करना है, अपने मन बुद्धि संस्कार में, अपने शरीर के एक एक सेल में, आंखों में, नाक कान मुख में। तो पहले इसको स्वर्ग बनाना है, और फिर धीरे धीरे जब हम ऐसे स्वर्ग, सब अपने आप को स्वर्ग बनाएंगे, तो धीरे धीरे दुनिया कैसी बन जाएगी? दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी, ठीक है, राइट। तो बनाएंगे, क्या ख्याल है? तो ये है स्वर्ग और ये है नरक। इसमें सब दुखी और बीमार, इसमें सब सुखी और खुश। समझ में आ गई? अभी हम क्या थे? नरकवासी। अभी क्या बन रहे? स्वर्गवासी, है ना। यस। अब तनाव, सारी दुनिया को में तनाव है। आप क्या समझते हैं तनाव मुक्त रह सकते हैं क्या? कोई आदमी ऐसा हो सकता है धरती पे जो तनाव से बिल्कुल मुक्त रहे, उसको कोई टेंशन ना हो? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? जो समझते हैं पॉसिबल नहीं है वो हाथ उठाओ। कि तनाव से मुक्त रहना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी तो टेंशन रहने ही वाली है ना। हाथ उठाओ, माताओं में हाथ उठाओ जो समझते तनाव से तो मुक्त हो ही नहीं सकते, तनाव से मुक्त पॉसिबल नहीं है ये दुनिया में। एक दो आगे, तीन चार पांच, माताओं की तरफ, एक और आगे, बस माताएं समझती पॉसिबल है, दो और, टीचर बहनों में, तीन चार, टीचर बहनों में क्या समझते तनाव से मुक्त रहना पॉसिबल, इस युग में रहना पॉसिबल है, इस युग में कलयुग में संगम पे रहना पॉसिबल है, क्या समझते हो रुपिंदर सिंह, रहना पॉसिबल है बिना तनाव के? नहीं बस, तो हाथ नहीं उठाया आपने, आप कौन सी पार्टी में, आप पार्टी में हो गया, आम आदमी पार्टी में, ना कांग्रेस ना बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल कौन सी पार्टी, अच्छा हैं जी। चलो देखो, तनाव किसे कहते हैं, तनाव माना स्ट्रेस, माना स्ट्रेस इज द रिएक्शन टू चेंज, तनाव कैसे कहते हैं, रिएक्शन टू चेंज, हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होता है अगर हम उससे रिएक्शन करते हैं उससे तनाव कहते हैं, उससे तनाव पैदा होता है, ठीक है। रिएक्शन माना जैसे सपोज आप अपने घर आते हो, आप अपने घर में आए और आपकी पत्नी आपको एक गिलास पानी देती है, मुस्कुरा के आपको एक गिलास पानी देती है और आपको रोज ऐसे देती है, और आज आपने आए आपने उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं, पानी देना तो बात ही अलग है, तो क्या होगा, चेंज हुआ ना व्यवहार परिवर्तन, तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाएगा, राइट। अब नहीं होता क्योंकि अब आप रिएक्शन करें, अगर एक्शन करो, सोचो आज क्यों नहीं, हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो सकता है इसकी कोई बात कोई गलत खबर आई हो, अगर आप सोच लो तो फिर रिएक्शन करोगे नहीं, तो फिर आपको फिर तनाव नहीं होगा। और लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज, जीवन का नियम क्या है, चेंज परिवर्तन, हर एक की लाइफ में परिवर्तन, रोज परिवर्तन हो रहा है, और जब परिवर्तन रोज हो रहा है तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमें स्ट्रेस फिर अपने आप, तो लॉ ऑफ लाइफ इस समय क्या है, तनाव। सबके जीवन में तनाव है क्योंकि सबके सब चेंज सबके जीवन में हो रहा है और सबके सब रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए आज का युग कैसा हो गया है, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान सबके सब तनाव में, और लोग समझते हैं कि इससे निकल नहीं सकते। इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, जो आपके प्रेशर्स हैं और उसको आप अंदर की शक्ति मतलब आत्मिक शक्ति से डिवाइड कर दो, अगर आपके प्रेशर आत्मिक शक्ति से ज्यादा है तो आप तनाव में रहेंगे। प्रेशर दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल प्रेशर आपके अंदर के प्रेशर, आपका मन का प्रेशर अंदर क्या है, अगर आप जल्दीबाजी में रहते हो हमेशा, आपकी नेचर बन गई जल्दीबाजी बचपन से ही है ना, आप चिंता करते हो, चिंता करने की आदत पड़ गई है, गुस्सा करने की आदत पड़ गई है, उदास होने की आदत पड़ गई, आप सेंसिटिव आपकी नेचर बन गई, नाजुक स्वभाव बन गया, भावुक बन गया, बात बात में आपको आंसू आते हैं, आपको डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, अकेले घर में रहने से डर लगता है, खुली जगह में जाने से डर लगता है, ये आपके अंदर का डर है, अंदर का प्रेशर है ना, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की आर्टरी बंद हो, कैंसर हो गया, ये आपके शरीर का प्रेशर है, ये भी अंदर का प्रेशर है, तो ये आपके प्रेशर्स हो गए। अब जब ये प्रेशर जो आपके अंदर है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में कौन से, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके परिवार में प्रेशर्स क्या क्या है, क्या क्या प्रेशर्स हैं आपके परिवार में, आपके परिवार में आपकी मान लो वाइफ से नहीं बनती है, बच्चे आपकी सुनते नहीं है, है ना, या आपके माता पिता में घर में कोई बीमार है, फाइनेंशियल प्रेशर, इनकम ज्यादा नहीं, इनकम कम है और पैसा खर्चा कम, मतलब खर्चा ज्यादा है पैसा कम है, तो है जी क्या बदल दिया सिर बदल दिया, अच्छा बहुत अच्छा, तो मतलब अगर आपके मन में फाइनेंशियल प्रेशर, लीगल प्रेशर, बाहर गर्मी है बहुत, बाहर बहुत पोल्यूशन है, ट्रैफिक बहुत है, ये भी प्रेशर है ना, ये बाहर के प्रेशर है, तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर मिलाकर के अगर ये इनको बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, एकदम नहीं बदल सकते, स्वभाव एकदम नहीं बदलता है, बीमारी एकदम नहीं बदलती है, घर वाले बदल सकते हो आप, आपकी पति या पत्नी आपका कहना नहीं मानते, आपस में बनती नहीं दोनों की, तो आप बदल दोगे क्या, बच्चे को बदल दोगे, तो बच्चे बदल नहीं सकते हो, समाज को बदल नहीं सकते हो, ट्रैफिक को बदल नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। किंतु क्या आपके हाथ में? आत्मिक शक्ति। ये कितनी बढ़ा सकते हो? आत्मिक शक्ति कितनी बढ़ा सकते हो बताओ? कितनी बढ़ा सकते हो विजयलक्ष्मी बहन? कितनी बढ़ा सकते हैं आत्मिक शक्ति? कितनी बढ़ा सकते हैं? जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। देखो मैं 1970s की बात कर रहा हूं, 1970 या 1970 के पहले भी, 68 69 की बात कर रहा हूं, जब हमारी पाकिस्तान से वॉर हुई थी 67 में हमारे अंदर बहुत, हमारे घर में, हमारे देश में अनाज नहीं था, अकाल पड़ गया, अनाज नहीं था। पाकिस्तान से, वहां से, अमेरिका से अनाज आता था लाल रंग वाला, कल्याण गेहूं आता था, है ना, उसकी रोटी ऐसे बनती, रबड़ के माफिक रोटी बनती थी, है ना, खाने को नहीं होता था, है ना। अच्छा, कोला नहीं मिलता था, तेल नहीं मिलता था। हम लोग तो याद है, हमें याद है उन दिनों हम लाइन में लगते थे। जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना आपके घर में, चार बच्चे, तो चार बच्चे चार लाइन, एक तेल की लाइन में, एक कोले की लाइन में, एक राशन की लाइन में सुबह से लगते थे, है ना। और फिर वो नंबर आएगा 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो जब नंबर, तब जाके मुश्किल से आपको कोयला मिलेगा, तेल मिलेगा और राशन मिलेगा, तो अवेलेबल नहीं होता था, चीजें नहीं मिलती थी। और टेलीफोन करना होता था किसी को, क्या करते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ती टेलीफोन के लिए, टेलीफोन के लिए। अगर आपको अमेरिका फोन करना, इवन मैसूर में फोन करना है, ट्रंक कॉल के लिए बैठे रहते थे, इतने भी ट्रंक कॉल मिलेगी, दो दो घंटे एक ट्रंक कॉल के लिए बैठते थे हम ना, ट्रंक कॉल आएगी, है ना, और टेलीफोन के आप दुकान पे जाके बैठते थे, है ना। हाँ, तो कितना मुश्किल था किसी से बात करना भी ना, चिट्ठी लिखते थे सिर्फ ना, चिट्ठियां, चिट्ठी का जवाब एक महीने, एक हफ्ते के बाद, दो हफ्ते के बाद आता था। तो जाकर तब ऐसा टाइम था, हर चीज मुश्किल थी, प्रेशर कितने थे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, दवाइयां अवेलेबल नहीं थी, थे क्या, कपड़े अवेलेबल नहीं थे, चीजें अवेलेबल नहीं थी, हर चीज, मतलब प्रॉब्लम कितनी थी। किंतु आदमी तब भी हम आदमी से पूछते ना, क्या क्या हालत है, सब भगवान की दया है, ऊपर वाले की उसमें खुश है, नीली छतरी के वाले के नीचे आराम से खुश में बैठे हैं, भंडारे भरपूर है, खाने को पेट में कुछ नहीं तो भी भंडारे भरपूर है ना। लब लो, आम आदमी ऐसे बोलता था, एसी नहीं था, धूप बहुत होती थी, गर्मी इतनी निकलती थी, गर्मी में दिल्ली में इतनी गर्मी होती थी, सारी कमर में फुंसियां हो जाती थी, इसको बोलते थे क्या बोलते थे, गमोनिया हो जाती थी, नाइसिल पाउडर लगाते थे, है ना, वो तुलसी, वो क्या होता था, वो मुल्तानी मिट्टी रगड़ते थे, है ना, कितनी मेहनत करते थे ना, शैम्पू नहीं होता था, मुल्तानी मिट्टी से सिर धोते थे, है ना, मुल्तानी मिट्टी पीस के फिर भिगोते थे, फिर सिर में से धोते थे, है ना। जो पुराने लोगों को थोड़ा याद होगा, है ना, हमारे टाइम वाले लोगों को याद होगा, है ना, है जी, क्या कह रहे, हमें ना बहुत बुरी हालत थी ना हमारी सभी के, मतलब तो भी लोग खुश रहते थे, सात सात बच्चे होते थे, आठ आठ बच्चे होते थे, वो 8 बजे तनख्वाह होती 100 रुपया महीने की, है ना, पिताजी की, उसमें भी खुश रहते थे, थोड़ा खा के भी थोड़ा खुश रहते थे, है ना। और आज क्या हालत है, आज मोबाइल आपके पास, कहीं भी कॉल कर लो, 1 मिनट में लगाओ, 1 मिनट कॉल पहुंच जाती है, आप अमेरिका में बात कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी मंगाना है, पिज्जा घर में मंगा लो, चाउमीन घर में मंगा लो, दुकान वाले से उसको बोलो घर में सामान दे के जाएगा, पहले सामान मिलता नहीं था, है ना, याद है। तो मतलब ऐसी हालत, आज हर चीज आपकी टिप्स पे है, डॉक्टर आपके घर में आ जाएगा, है ना, आपको अपॉइंटमेंट फोन पे मिल जाएगी, कहीं भी आप डॉक्टर, अस्पताल ही अस्पताल पड़े हैं, और ऐसे 5 स्टार जैसे अस्पताल पड़े हैं, है ना, पैसे भी आपके पास हैं, सारे भंडारे भरपूर है, और फिर भी देखो आदमी एयर कंडीशन रूम में बैठा है, सामने टीवी खुला हुआ है, खबर यहाँ के मैच चल रहा है अमरीका में, यहाँ देख रहे हो बैठ के आराम से, ना वो तो भी आदमी पसीने पसीने हो रहा है टेंशन के कारण, दुखी हो रहा है, पूछो भाई क्या हाल है, बात मत पूछो, बस जी रहा हूं, बस कैसे कैसे करके जीना, मतलब मुश्किल हो रहा है, रो के ही बोलता है आदमी ना, पैसे वाला भी रोके बोलता है, गरीब भी रोके बोलता है, अमीर भी रोके बोलता है, सभी रोके, पढ़ा लिखा भी रोके बोलता है और अनपढ़ भी रोके बोलता है, सब टेंशन में नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, प्रेशर बहुत ज्यादा थे, आत्मिक शक्ति बहुत थी उस, हर एक आदमी खुश था अपनी खाल में, गरीब है तो गरीब खुश है, उसको ये नहीं चाहिए कि दूसरे को देख के इसके पास ये मेरे पास भी होना चाहिए, है ना, नहीं ठीक है भाई, वो उसकी उसके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, और वो भी नशे में रहते थे, गरीब भी नशे में रहते थे, उसको अपना नशा था ईमानदारी का, है ना, गरीबी का नशा था। और आज झोपड़ी में रहता है आदमी, देखता है शेवरले कार लेनी है, बड़ी कार लेनी है ना, वो ऑडी लेनी है, इंटरनेट पे बैठे बैठे देखते रहते हैं ना। पिताजी को बोलता है, पापा मेरे को ये वाली कार लेनी है। अरे बेटा मेरे को ये पैसे नहीं, खाने को पैसे नहीं है। नहीं नहीं पापा मेरे को ये, आप किस मेरे को पैदा क्यों किया था फिर आपने? बच्चे आज माँ बाप को ये बोलते हैं, मेरे को पैदा क्यों किया फिर आप, मेरी पालना नहीं करते तो मुझे पैदा क्यों किया? तो मतलब आज के समाज में हर आदमी इतना दुखी है, परेशान है। तो आज का, और देखो एक आदमी पहाड़ पे बैठा है ना, बस एक एक एक, एक चादर बांध रखी है उसने, ऐसे कपड़ा कोई ठंडी है, टेम्परेचर -2 है, और वो वहां पे बैठा है और जंगल में बैठा है और आसपास सब कुछ खुले में बैठा है, झोपड़ी वोपड़ी भी कुछ नहीं है और मुस्करा रहा है, पागल है क्या वो? क्या प्रेशर नहीं है उसको? उसको भी खाना खाने को चाहिए, ढकने के जगह चाहिए, है ना, आसपास सांप भी है, शेर भी है, भालू भी है, क्या उसको डर नहीं लगता है? तो मुस्कुरा क्यों रहा है? पागल है ना इसका मतलब? एक आदमी एसी रूम में बैठ के टेंशन में हो रहा है क्योंकि आत्मिक शक्ति उसके पास ज्यादा है। क्या हमारे पास यहाँ प्रेशर नहीं है क्या? जो पानी आप पी रहे हैं, जो पानी आप इसमें नहा रहे हैं, वो पानी हम सारा का सारा टैंकर से लेके आ रहे हैं, पता है आपको? यहां से 20 किलोमीटर दूर है पानी, वहां से टैंकर भर भर के लाते हैं, इतना महंगा पड़ता है। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, एक एक 10,000 लीटर पानी लाने के लिए हमको कितना पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, कितना डीजल खर्च होता है? ट्रक हमारे 7 लीटर देते हैं, 7 किलोमीटर की एवरेज देते हैं, कितना हुआ? 6 लीटर डीजल जलता है एक 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 10,000 लीटर पानी बनाने में, 5,000 लीटर पानी बनाने में कितने पैसे हुए? ऐसे पानी हम जो नहा रहे हैं ना, इस पानी में ऐसे पानी नहा, ऐसे पानी लग गया। हर चीज हमको महंगी देते हैं। हमारा बैच देखते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अमीर आदमी है, अच्छा इनको बाकी को 50 रुपए की देंगे, हमको हमको 70 रुपए की देते हैं ना। हर चीज हमको महंगी देते हैं, फल वाला भी हमको फल महंगे देता है, सस्ते नहीं देता है, वो समझते हैं बहुत पैसे वाले हैं ना, तो हमको हर चीज फालतू लगा के देते हैं ना। तो हमारी जो है, हमको हर चीज मुश्किल है, यहाँ सब्जी नहीं मिलती, यहाँ अपनी जो हर चीज हमको पंजाब से लाएंगे, गेहूं कहीं और से लेके आते हैं, सब्जियां कहीं और इतनी दूर से लेके आते हैं आपके साथ, यहाँ पे क्या मिलता है? राजस्थान तो ये तो रेगिस्तान है ना, आसपास कहाँ मिलता है? कुछ उगता भी नहीं ज्यादा, है ना। तो क्या यहाँ पे सब रोते रहते हैं क्या? सब मुस्कुरा रहे हैं, सब पागल है ना? नहीं, पागल नहीं है क्या है? दिन रात सेवा करते हैं, सुबह उठते 3:30 बजे, रात को 10-10 बजे 10:30 होते हैं, फिर भी सारे मुस्कुराते रहते हैं, जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो नहीं देते, क्यों? वो तनाव मुक्त नहीं है क्या? स्ट्रेस फ्री नहीं रहते क्या? तो ये जो है, क्योंकि आत्मिक शक्ति ज्यादा है, तो अपने अंदर आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ तो क्या होगा, क्या होगा? तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसको बढ़ाने की आवश्यकता है? आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ तो आपके अंदर कभी भी तनाव, आप क्या बन जाएंगे? बेगमपुर के बादशाह। क्या बन जाएंगे? बेगमपुर देखा आपने? देखा बेगमपुर भैरों ने? देखा बेगमपुर? देखा क्या? कहां पे है? उदयपुर में है क्या? हैं जी, कहां पे? रीटा बहन उदयपुर में है, बेगमपुर के है, दिल्ली में बेगमपुर है ना, दिल्ली में तो बेगमपुर, हैदराबाद में बेगमपुर है ना, बेगम पेट है वहां पर, पेट बेगम पे है, बेगम माना जहां कोई गम नहीं है ना। तो अगर आप अपने को आत्मिक शक्ति बढ़ा लो तो आप बेगमपुर के क्या बन गए? बादशाह बन गए। नहीं तो ये जो है इसका तरीका है कि इनर स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय राजयोग मेडिटेशन, ABCD। बस सारा दिन ABCD करते रहो, है ना, A for आत्मा, B for बाबा, C for कनेक्शन, D for ड्रामा। बस ABCD से आगे बढ़ना ही नहीं है, ई एफ नहीं करना, ई माना एक्स्ट्रा, एफ माना फोर्स, वो नहीं करना, ई एफ चाहिए ही नहीं, है ना, हमको क्या चाहिए? सिर्फ ABCD, है ना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अनुभव करते रहो। तो ये अनुभव करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा सिंह साहब? आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, कोपिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी और आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब आत्मा क्या चीज है? आत्मा यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, ये यहां पर आत्मा की सीट है। ठीक है, ये लोकेशन है, इसको आप देख नहीं सकते आंखों से, कितना मर्जी कोशिश करो देख नहीं सकते हो। कई लोग कहते हैं हमारे सिर दर्द हो जाता है, वो क्या करेंगे अंदर से आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके आंखें चढ़ा लेते हैं अंदर से ना, ऐसे चढ़ा के अंदर ऐसे पागल से बन जाते हैं ना, यूं देखते हैं अंदर से, अंदर यहां आत्मा बैठी यहां देखने की कोशिश करते। तो ये कोई मेडिटेशन थोड़ी ना, कोई चलते फिरते उठते बैठते जो मैं हूं उसको अनुभव करना होता है। ठीक है, और ये जो है ये सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन द टू आईब्रोज, ये हाइपोथैलेमस के यहां पर, ये हाइपोथैलेमस है यहां पर है स्थित, यहां पर जब बिंदु लगा ना यहां, ये पिट्यूटरी है यहां पर। और ये जो है आत्मा की 3 शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, आप सब जानते हैं है ना। बुद्धि क्या है मैंने बताया, बुद्धि में बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि जो ये देख रहे हैं, ये जो बीच में लाइट देख रहे ना, ये जो आत्मा की 7 एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर है बीच में आत्मा के बिल्कुल आसपास, जैसे ये बल्ब है ना ट्यूब लाइट है, इसके आसपास सबसे ज्यादा लाइट है, जितना दूर जाएंगे लाइट कम होती जाएगी। सेम वे जो आत्मा के आसपास जो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, 7 एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पर होती है, और बाकी जो इसी को हम बुद्धि कहते हैं ना। मैं कल डायग्राम बना के बताऊंगा या शाम को बना के बताऊंगा, ठीक है, कि बुद्धि क्या है, मन क्या, संस्कार क्या। बुद्धि में हमारी सारी मेमोरीज, मैंने बताया सुबह ही बताया था, अभी 9:30-11 बजे बताया होगा कि बुद्धि हमारी जो चीज देखने जब हम देख चुके हैं इस जीवन में, वो उसमें बुद्धि में उसको हम दिखाई देती है, इन बुद्धि रूपी नेत्र से दिखाई देती है, और जो हम देख नहीं सकते वो अनुभव होती है। राइट, तो जो चीज देखने की नहीं है उसको देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसको अनुभव करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। ओके, और मन जो सोचने की शक्ति है, और संस्कार जो भी चीज हम बार बार करते हैं, तो मन जो है बेसिक, सूक्ष्म शरीर बेसिकली क्या है, हमारा मन है। क्या है सूक्ष्म शरीर? हमारा मन है, जैसे कि, और मन की शेप क्या है, मन कैसा है, कैसा है, चंचल नहीं। मन की शेप क्या है, सूक्ष्म शरीर की शेप क्या है, जैसे आप एक सूखी ब्रेड ले लो, सूखी ब्रेड, और एक प्लेट में दूध डाल दो और सूखी ब्रेड उसके अंदर रख दो तो क्या होगा, और उसको उसमें रख दिया तो क्या होगा, सारा दूध कहां जाएगा, ब्रेड के अंदर चला गया। अब दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है, तो जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारा सब कुछ है, ब्रेन की सेल्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं, आंखें भी, नाक कान मुख सब कुछ, हार्ट है, हार्ट की आर्टरीज भी, सब कुछ, ऐसे कैसे, सूक्ष्म शरीर में सब कुछ है, किंतु किसका बना हुआ है, लाइट का बना हुआ, किसका बना हुआ, लाइट, मतलब लाइट कौन सी लाइट, ट्यूब लाइट, सूरज की लाइट। लाइट का मतलब है, अगर हमारे हमारे जो विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति स्मृति, अगर वो सत्य पे आधारित है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे संबंध बाबा के साथ हैं, ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, पवित्रता भरी हुई, शांति प्रेम सुखानंद शक्तियां भरी हुई है, तो ये लाइट है, सत्य की लाइट जिसमें है, सत्य की लाइट मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में सत्य की लाइट है, तो उसे लाइट की बॉडी बन गई। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक कहां पर होता है, हमारे मन में एनर्जी ब्लॉक होते हैं, हमारे विचार जो नेगेटिव देह भान के ऊपर बेस्ड होते हैं, सुना, ये इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसको देख नहीं सकता, ये ऐसे कैसे हो गया, इसने कैसे ऐसा क्यों किया, इसने धोखा दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, गाली दे दी, तो ये जो बातें हैं ना मन में, जो हमारे जो एक्सपीरियंस होते जीवन में ना, संबंधों में, संपर्क में, लोगों के साथ, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं और उससे वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। राइट, और जिस अंग में वो एनर्जी जानी, मैंने बताया हर अंग की अपनी अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जानी बंद हो जाती है, उससे उस अंग में बीमारी पैदा होती है, वो जो रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है और वो वहां टॉक्सिन जमा होकर वो अंग बीमार हो जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर की मतलब मन ही सूक्ष्म शरीर है। ओके, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि क्या है, करप्ट बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है या करेक्ट हो सकती है ना, या श्रेष्ठ हो सकती है, वो निर्णय कर सकती है। और हमारी बुद्धि को हमारे संस्कार प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है हमारी बुद्धि को? जैसी आदत पड़ गई, आप मान लो स्मोकिंग करने की आदत है और हमने कहा आज से आप स्मोकिंग नहीं करना, आपको हार्ट की बीमारी हो गई या आपको कैंसर हो, कैंसर होने की चांस है, तो क्या करेंगे? आपकी जेब में सिगरेट की पैकेट है, आप क्या करेंगे? सिगरेट की पैकेट है क्योंकि आपको हर घंटे में पीने की आदत है, तो सिगरेट अपने आप निकलेगी, संस्कार है ना, आदत है ना, आदत अपने आप, उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, निकलेगी और आपकी लाइटर जलेगा और सिगरेट मुंह पे लग जाएगी, जलनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको याद आएगा अरे डॉक्टर ने मना किया था, तो फिर आप कहेंगे अरे डॉक्टर भी तो पी रहा था ना, या वो तो आदमी पीता है ना, मैं तो अभी 50 साल का हूं, वो आदमी तो 70 साल का हो गया, वो तो रोज 40 सिगरेट पीता था, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को क्यों होगा? अच्छा चलो उसकी बात छोड़ो, नहीं नहीं मेरी ना 5 सिगरेट बची ना, तो आज दिन भी अच्छा नहीं है ना, मैं ना आज मेरा हर काम गुरुवार से शुरू होता है ना, गुरुवार से शुरू छोड़ूंगा ना, आज तो मंगलवार है ना, तो 2 आज पी लेता हूँ, 2 कल पी लूंगा, फिर बाकी बचेंगी ना, फिर वो बाकी गुरुवार से मैं ये काम शुरू करूंगा, ठीक है, नहीं तो कल सुबह शुरू करते हैं, आज ये बीड़ी सिगरेट ना 5 खत्म कर देता हूँ, कल बुधवार से शुरू करते हैं, नहीं तो जैसे हमारी क्या आदत, हमारी क्या बुद्धि को प्रभावित करती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और फिर हम वो काम बार बार कर लेते हैं। संस्कार क्या चीज है? मेमोरीज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड स्पीच एंड एक्शन। जो चीज हम बार बार करते हैं हमारा आदत बन जाती है अंदर, बार बार जो राहुल ने कल बताया हमारे अंदर चैनल्स बन जाती है, न्यूरॉन्स की जैसे होती है, जैसे लाइनें होती है ना, लाइन नहीं होती, ट्रेन की लाइनें होती है, जब देखो कहीं आता है, हम जब स्टेशन आता है तो क्या होता है, लाइनें आप मुड़ती है ना, वो उसको कहां खड़ा होना है, कौन सी तरफ जाना है, सीधा जाना तो सीधी लाइन अलग होती है, अगर स्टेशन पे खड़ना है तो वो वहां पे लाइनें थोड़ी देर पहले ही वो लाइन बदल दी जाती है, वो फिर उस प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4 जहां जहां उसको जगह मिली वहां पे उस पे गाड़ी पहुंचती है, राइट। तो हमारे अंदर जो भी हम सोचते हैं बार 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 सोचते हैं तो हमारे अंदर चैनल्स बन जाती है, है ना, हमारे ब्रेन में चैनल्स, वही फिर चैनल काम, जैसे वो ट्रैक नहीं होती लाइन, रेलवे की लाइन, उस पर ही फिर हमारा विचार दौड़ते रहते हैं उसी के अंदर। जो चीज आपको आदत पड़ गुस्सा करने की, तो गुस्से की ट्रैक बन गई आपस में, 10-100 अरब न्यूरॉन्स है ना जो ब्रेन में, तो वो बन गई, वो बार बार उसी बात को देखेंगे गुस्सा, वैसे ही गुस्सा आएगा। कोई चीज की खाने की आदत पड़ेगी, वो चीज देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, तो मतलब आपके अंदर वो ट्रैक बन गई, अब आपको नई ट्रैक बनानी है। अब जैसे नए विचारों से, नई भावनाओं से काम करेंगे तो आपके अंदर नई ट्रैक, नई लाइनें बन जाएंगी, फिर ऑटोमेटिक वो लाइन खत्म हो जाएंगी और नई लाइनें चालू हो जाएंगी, अब वो उस पर आप चलते रहेंगे। ये लाइनें हेल्दी लाइन है, आपको हेल्दी बना देंगे, हैप्पी बना देंगे, पुरानी जो लाइन थी जो बनाई थी आपने वो आपको बीमार कर रही थी रोज और दुखी कर रही थी, ठीक है, समझ गए। तो इसको कहते हैं संस्कार, इसी को हड्डी भी कहते हैं, हड्डी 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 समझते हैं कि हड्डी माना, हड्डी बहुत सख्त होती है ना, इसलिए कहा जाता है दधीची ऋषि ने यज्ञ में अपनी हड्डियां स्वाह कर दी। तो दधीची ऋषि कौन है? हम ही दधीची ऋषि हैं, कि हम अपनी ये यज्ञ माना, ये ब्रह्मा कुमारी का जो यज्ञ है, यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ माना योग और ज्ञान, क्या है, योग और ज्ञान, इस योग राजयोग और ज्ञान में, ज्ञान रूपी यज्ञ में हम अपने क्या करते हैं, हड्डियां माना पुराने संस्कार जो हमारे आसुरी संस्कार हैं उनको हम स्वाहा कर देते हैं। हड्डी का मतलब ये नहीं कि आप हड्डी निकाल निकाल के उसमें डाल दो, बाबा कहता अपनी हड्डियां मेरे को दे दो, हड्डियां नहीं चाहिए बाबा को, क्या चाहिए, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को बाबा के श्रीमत पर, योग योग माना सबसे पहले हम योग सीखते हैं, पहले योग सीखते हैं ज्ञान सीखते हैं, बताओ रीटा मैन आप बताओ, पहले ज्ञान सीखते हैं पहले योग सीखते हैं। बाबा मुरली में क्या कहता है, बाबा आया है तुमको राजयोग सिखाने और साथ साथ ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देने, है ना, ऐसे बोलता है ना, कभी ये नहीं बोलता पहले मैं सृष्टि के आदि मध्यांत, आप मुरली में ध्यान से पढ़ना ये लाइन होती है बाबा की, राजयोग माना बाबा अपने को कहता है कि मैं तुम्हारा आत्माओं का पिता हूं, तो पहले ये योग मुझसे लगाओ, और पिता समझ के, टीचर समझ के, गुरु समझ के फिर मुझसे शिक्षा लो, रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान जानो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, है ना। तो पहले योग है और फिर ज्ञान के आधार पर फिर योग है, राइट, ठीक है ना। तो इसलिए यज्ञ कहा गया। और यज्ञ में कौन रहते हैं? खाली टीचर बहने रहती है यज्ञ में, या समर्पित भाई बहन रहते हैं, या और भी कोई रह सकता है? जो भी सारा दिन योग और ज्ञान में खोए रहते हैं, उनके हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास योग में, मतलब बाबा के साथ कनेक्शन और ज्ञान के मनन चिंतन में खोए रहते हैं, वो बाबा के यज्ञ में ही है, राइट, वो समर्पित ही है। मतलब उन्होंने अपनी मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया है, भगवान की नजर में वो समर्पित है, ओके। तो क्या करना है आपको? अगर ब्लॉकेज कैसे खुलेंगे? अपनी हड्डी हड्डी क्या करनी है? यज्ञ में स्वाहा करनी, माना अपनी जो पुरानी आदतें, सोचने की, देखने की, पढ़ने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, है ना, कर्म करने की, उनको इस योग और ज्ञान में स्वाहा। स्वाहा का क्या अर्थ है? स्वामने आत्मा, है ना, स्वाहा, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, और ये सब कचड़ा खत्म, आहा, कचड़ा खत्म तो आहा हो गया ना, वाहवा हो गया ना फिर, नहीं, कचड़ा है तो क्या है, बदबू है ना, कचड़ा खत्म हो गया, खाली आत्मा बची और परमात्मा बचा, नहीं। तो ये अपने आप को गहराई से समझ, सुना हृदय भंडारी, क्या ख्याल है, करना क्या नहीं करना है? कचड़े से प्यार हो गया है जी, तो ये हमें करना है, ठीक है। और ये आत्मा की सात एनर्जी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राजकोट वाली बहन ना, तीन नंबर लाइन में, तीसरे नंबर पे, अपने कान ऐसे से करो ना बहन जी, ऐसे से अपने कान दोनों ऐसे से कर, जिनको नींद आए ना कभी भी, खुद ही अपने कान पकड़ के अपने आप ठीक कर, है ना, थोड़ी नींद आए एकदम आंख खुल जाती है, 15 मिनट तो आंख ऐसे हो जाती है ना, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर अपने कान पकड़ लो, है ना, तो आपके कान अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जिसको भी आए ना नींद, अपने आप अपना इलाज कर लिया करो ना, थोड़ी सी भी नींद आए, आलस करने की आदत है ना, सारा जन्म ऐसे ही रहा ना, रात को नींद आना नहीं, दिन में सोना है ना, अभी आदत बदलनी है, नहीं। तो ये जो है ज्ञान, भगवान हमको क्या देता है? आप अब जो बताए ठीक मुझे बताना, भगवान हमको ज्ञान देता है कि पवित्रता देता है कि शांति देता है, क्या देता है? भगवान हमको पवित्रता भी देता है क्या, शांति देता है क्या? भगवान हमें ज्ञान देता है, यही भगवान की कृपा है, यही आशीर्वाद है। ये ज्ञान को यूज करके हमको पवित्रता बनानी है, इस ज्ञान को यूज करके हमको शांति बनानी है। रॉ मटेरियल ज्ञान है, भगवान हमको सिर्फ ज्ञान ही देता है, पवित्रता हमको बनानी पड़ती है, अपनी घोट तो नशा चढ़े है ना, तो हमको घोटना पड़ता है ज्ञान को। ये ज्ञान को घोटने से ही पवित्रता आती है, इस ज्ञान को घोटने से ही शांति आती है, इस ज्ञान को घोटने से ही क्या आता है, रूहानी प्रेम पैदा होता है, इस ज्ञान को घोटने से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, इस ज्ञान को घोटने से ही आनंद की अनुभूति होती है, इस ज्ञान को घोटने से क्या होता है, एक एक शक्ति की अनुभूति होती है, राइट। मैं ऐसा नहीं सोचो कि आप योग करने बैठे ज्ञान सागर बाप से ज्ञान की किरणें आ रही है ना, पवित्रता के सागर बाप से पवित्रता किरणें आ रही, हमको चलते फिरते बनानी पड़ेगी, आती नहीं है, बनानी पड़ती है, और बना करके फिर हमसे किरणें निकालनी, किरणें निकालना माना आप बैठ जाओ सबको किरणें जा रही है, ऐसे नहीं है, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा जब ऐसा करेंगे तो फिर आपके कर्मों में आएगी, यस, कि किरणें खाली भेज देंगे काम चल जाएगा, है ना, किरणें नहीं, हमारे प्रैक्टिकल कर्म में ऐसा होना चाहिए, तब लोग बदलेंगे, है ना। और अपने घर वालों को अभी भी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना, मैंने फिर बताया था पहले भी, अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने बच्चों को कभी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। ज्ञान सुनाएंगे ना तो आपको टॉन्ट करेंगे। टॉन्ट क्या करेंगे? बड़े आए ज्ञान सुनाने वाले, है ना, खुद तो कितना गुस्सा करते हैं, खुद तो ऐसे करते, खुद तो ऐसे करते। नहीं, कर्मों से सिखाना है। आपके अंदर मधुरता हो, सरलता हो, नम्रता हो, उदारता हो, धैर्यता हो, तो आपके बच्चे देखेंगे मेरे पिताजी पहले बड़ा गुस्सा करते थे, अब तो गुस्सा करते ही नहीं, मुस्कुराते ही रहते हैं। कोई बात, हर बात में पेशेंस रखते, पहले बहुत जल्दीबाजी, मेरी माँ तो हर समय ऐसे करती थी, अभी मेरी माँ को क्या हो गया? वो थोड़े दिनों में कहेंगे मम्मी आप कैसे रहती हो, आपको क्या हुआ आपको? मेरे को तो बात बात में गुस्सा आता है, तो आपको तो गुस्सा ही नहीं आता है। तो फिर कभी एक दो लाइन उसको समझा दो, वो फिर सामने से पूछेगा, पूछेंगे तो आप उसको बताएंगे तो अब एक्यूरेट चलेगा। तो आपके कर्मों से आपको सिखाना है ना। बाबा कहता है चेहरे और चलन से सिखाओ। चेहरा माना हमारा मन, हमारे वाइब्रेशंस, हमारा वायुमंडल, उससे लोग बदलेंगे। और चलन माना कर्म। चेहरा माना मन, जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है। तो अपने मन को बदलो तो लोग बदलेंगे, बोल से नहीं बदलेंगे। बोलने वाले तो बहुत है दुनिया में, हमसे अच्छा अच्छा बोलने वाले बहुत है। YouTube पे देखो, कितने टीवी खोल के दे बैठ जाओ, कितने अच्छा अच्छा बोलते हैं, कितना धारा प्रवाह बोलते हैं, है ना, बहुत सुंदर बोलते हैं, हमें तो इतना बोलना ही नहीं आता है। तो चेहरा और चलन, चेहरा माना मन और चलन माना कर्म। तो आपके मन और कर्म, मनसा और कर्मणा से लोग बदलेंगे, ना कि आपके बोल से बदलेंगे। यस, क्या ख्याल है? तो भाषण नहीं करो अभी, लोगों को स्पेशली घर वालों को नहीं करो, है ना। घर वालों को कर्मों से सिखाओ और बाहर वालों को भाषण से सिखा सकते हो, पर उसमें भी आपके क्या होना चाहिए, मनसा और कर्मणा एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, तो जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते जाओगे, मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी, है ना। मन बुद्धि पवित्र माना अपने सत्य स्वरूप में टिकोगे ना, जब सत्य स्वरूप में टिकोगे, अपने अनादि और आदि स्वरूप में टिकोगे, तो दूसरों का भी अनादि और आदि स्वरूप दिखाई देगा। मैं कल आपको एक बात बताई थी, कल बताई थी, परसों बताई थी, कल ही बताई थी कि आपके जो भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे हैं, वो भी दैवी कुल की आत्माएं हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी ऐसे मां बाप को जन्म ले लो जिसको, जो कि दैवी कुल में नहीं आने वाला हो, ठीक है। भले वो बाद में आएगा, अभी नहीं है, है ना। भले आप कल अवस्था आपसे भी फास्ट चला जाए, वो ज्ञान को जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, कि तो चेक करते रहते हैं आप, इसलिए आपका साथ नहीं देते, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो। ओके, तो ये मत सोचा करो ये तो पूरा पूरा रावण है, ये तो पूरी ये है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप अपने कर्मों को बदलो तो वो आपको पहचानेंगे, परिवर्तन होंगे। समझ में आई बात आपको? तो ये हमको समझना है। तो जितना पवित्रता माना ये है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना, वो सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। तो जितना एबीसीडी करते जाओगे, एबीसीडी मैंने बताया ना, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, माना आठ, नौ संबंध। हमें बाप से नौ संबंधों का विशेष अनुभव करना होता है। माता का संबंध, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको माता की पालना दे रहा है ना। शिव बाबा किसके द्वारा? बाबा हमको हर चीज की, हरे हर संबंध की पालना किसके द्वारा दे रहा है? ब्रह्मा के द्वारा। खाली माता की नहीं, पिता की भी पालना ब्रह्मा के द्वारा देता है, टीचर की पालना भी ब्रह्मा के द्वारा देता है, क्योंकि हमारे पास शरीर है और हमको बिना शरीर वाला बिंदु आके दिखाए तो हमको क्या समझ नहीं आएगा ना। वो ब्रह्मा के द्वारा हमको माँ की पालना अपनी गोद में लेता है, माँ के द्वारा हमको क्या देता है, दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट गिफ्ट में देता है, जो एक सेकंड में हमको क्या करती है, मुझे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को किस क्या करती है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में हम, मैं आत्मा और पवित्र बुद्धि पवित्र मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन बाबा का दिल तख्त। तो बाबा के दिल तख्त पे, शिव बाबा का दिल तख्त, उसमें कौन बैठा है? उस पर जाकर कौन बैठा है? उस पर सबसे पहले जाके कौन बैठा? शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके कौन बैठा? क्यों बैठा? क्योंकि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने निरंतर ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर के और निरंतर शिव बाबा की श्रीमत पे चल के अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन सतो प्रधान बना लिया। उसकी आज्ञा श्रीमत पे चला ना, तो उसका आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चा बन गया। तो आज्ञाकारी वफादार बच्चे कहां जा कहां रहते हैं जाकर के? मां बाप के दिल में रहते हैं, मां बाप के दिल तक पे रहते हैं। तो हमारा बाप कौन है? शिव बाबा। तो ब्रह्मा का बाप कौन था? शिव बाबा। तो शिव ब्रह्मा बाबा शरीर पुराना शरीर छोड़ के लाइट की बॉडी में ना पवित्र बुद्धि पवित्र मन पवित्र संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ कहां पहुंच गया? परमधाम थोड़ी ना पहुंचेगा भाई। बाबा शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया, क्योंकि शिव बाबा का दिल तख्त कैसा है? शिव ब्रह्मा बाबा का दिल कैसा है? ब्रह्मा बाबा के दिल सच्ची और साफ है। तो क्या क्या हुआ? शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। तो क्या बन गया? क्या बन गया? बाप दादा बन गया? नहीं, बाप दादा बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब मुझे भी बाबा की गोद में जाना है, सूक्ष्म वतन में जाना है, सूक्ष्म वतन कैसे जाऊंगा? अब बाप शिव बाबा की श्रीमत पर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पहले सबसे पहले करके दिखाया, अगर मैं उसको ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करूं, अपनी बुद्धि को ब्रह्मा बाबा के समान बुद्धि को मन को संस्कारों को संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बना दूं, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? बाप दादा की गोद का अनुभव करूं, मतलब सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन ये है, पवित्र बुद्धि पवित्र मन पवित्र संस्कार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म वतन क्या है? शिव बाबा का दिल तख्त है और ब्रह्मा बाबा वहां बैठा है। कैसे? लाइट की बॉडी, लाइट की बॉडी में ना पवित्र बुद्धि पवित्र मन पवित्र संस्कार अपनी लाइट की बॉडी के साथ, उसकी उसका दिल ब्रह्मा बाबा का दिल सच्चा और साफ है, उसमें शिव बाबा आके बैठा है। तो अगर आप अपनी बुद्धि मन संस्कार को इस मुरली के अनुसार संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बनाते जाओगे, तो जितना आप ज्यादा बनाते जाओगे, सुना विनोद भाई, जितना बनाते जाओ उतनी ज्यादा आपको बाबा के साथ का अनुभव होगा, बाबा की गोद का अनुभव होगा। बाबा आपको प्यार कर रहा है, बाबा आपसे बात कर रहा है, बाबा आपसे हर समय जब चाहे आप बात कर सकते हो, जब चाहे वहां जा सकते हो, है ना? सुना, क्या करना है आपको? इस मुरली रूपी साबुन से क्या करना है? अपने है ना बुद्धि बुद्धि जो बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है उसको घिसते रहना है, अपने मन को मन में घिसते रहो, हर विचार इस मुरली के आधार से करो, हर भावना आपकी मुरली के आधार से हो, हर संकल्प हर वृत्ति अपनी वृत्ति मुरली के आधार से बनाओ, श्रीमत के मुरली मन श्रीमत, और अपनी स्मृतियां उसके आधार पर बनाओ, तो आपकी बुद्धि भी स्वच्छ हो जाएगी, मन भी स्वच्छ हो जाएगा, और संस्कार फिर उसके अनुसार कर्म करो तो संस्कार भी शुद्ध बनते जाएंगे, और जितना जितना शुद्ध बनते जाएंगे उतना आप आपका आप बाबा के दिल में रहोगे, मतलब बाप दादा के दिल में, ब्रह्मा बाबा के दिल में भी रहोगे और शिव बाबा के दिल में भी रहोगे। तो फिर आपसे बाप से बात करने का मतलब क्या है? आपके संकल्प बाबा को कैच होंगे और बाबा के संकल्प आपको कैच होंगे, समझ में आई? ये है सूक्ष्म वतन। ये सूक्ष्म वतन नहीं है कि बाबा ने कहा ना साक्षात्कार मारत है, साक्षात्कार मात्र है ना, सूक्ष्म वतन को फिजिकल चीज थोड़ी ना है ये साक्षात्कार। इसमें बाबा जैसे एक माँ का दिल कहाँ होता है? एक माँ का दिल कोई फिजिकल होता है क्या? बच्चा आज्ञाकारी वफादार सपूत है तो माँ के दिल में रहता है। अब माँ के दिल में क्या है? माँ ने अपने बच्चे छोटे से देखा, छोटेपन से देखा है, जब पैदा हुआ तब भी देखा था, जब वो छोटा 9 महीने 10 महीने का हो गया तो धीरे धीरे चलना शुरू किया, पहले पैरों से चला, ऐसे चलता था हाथ पैर ऐसे करके, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू किया, 1 साल का हो गया तो माँ ने उसके पैर में पजेब पहना दी, पजेब नहीं घुंघरू होते हैं, घुंघरू माँ डाल देती है, और फिर माथे में मुकुट लगा देती है, ऊपर गुलाब वो भी बना देती है, क्या बोलती है, मोर का पंख भी लगा देती है ना, उसको वही अपना बच्चा कृष्ण लगता है, श्री कृष्ण लगता है ना, उसको देखती है, इतना इनोसेंट। इनोसेंट कितना होता है कि बच्चा छोटा बच्चा होता है ना, चींटी आ जाती है उसके पैर पे, तो वो चींटी हटाता नहीं है, तो माँ को बताता है, मम्मी देखो चींटी है ना, तो मम्मी कहती है, फिर मम्मी हटा देती है, वो कहती है हटा दे, कोई बात होती माँ को हर से सच्ची सच बताता है। तो बच्ची को उसको बच्चे को माँ को क्या लगता है, मेरा बच्चा देखो इतना ही कितना भोला है, कितना भोला है, ये चींटी भी नहीं मार सकता है। कोई 5 साल का बच्चा हो जाता है, कोई माँ लेके आते अपने बच्चे को, देखो तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, कहती मेरे बच्चे ने मारा, मेरा चींटी नहीं मार सकता है, आपके बच्चे कैसे मारेगा, है ना? तो माँ की क्या वृत्ति बन गई, है ना, वही वाली वृत्ति ना। 35 साल का किसी का मर्डर भी कर दे तो पुलिस लेके आएगी बच्चे को, तो मेरे बच्चा, अरे इंस्पेक्टर साहब मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है, तो कैसे मारेगा, तुम झूठ बोल रहे। तो मतलब उसके मन में वही वाली इमेज है। ऐसे ही ब्रह्मा माँ के मन, माने ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा माँ ने हमको देखा, किसमें देखा है, स्वर्ग में देखा है ना, शिव बाबा ने हमको परम धाम में देखा है ना, तो उनके बाप दादा के मन में क्या है, हमारा अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप है, तो वो हमारा उसी को देखते हैं, भले हम कितने काले काले हो गए, गंदे हो गए हो, है ना, कैसे भी काले कलूटे हो, तो उसको क्या दिखाई देता है, अरे देखो कितना चमकता सितारा है, कितना प्यारा है ना, कितना देवी देवता, देखो क्या चमक रहा है, क्या बढ़िया है, देखो ना, तो उसको देख के हमें मीठे मीठे करता रहता है ना, है कड़वे कड़वे तो देख के मीठा मीठा बोलता रहता है। तो ऐसे ब्रह्मा जैसे माँ के दिल में क्या होता है, बच्चे का पैदा होने वाला स्वरूप, बच्चे का एक साल का स्वरूप, दो साल का स्वरूप, पांच साल का स्वरूप, पंद्रह साल का स्वरूप रहता है ना, ऐसे ही हर हम में से हर एक आत्मा का संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप। जब हम पिछले कल्प में हम संपूर्ण ब्राह्मण थे, फिर फरिश्ता बने थे, तो वो स्वरूप भी हमारा मतलब बाप दादा के दिल में है, हमारा सूक्ष्म वतन में है, और फिर हमारा देवता स्वरूप भी बाबा के पास है। तो बाबा क्या करता है, जब ऊपर जाते हैं ना बाबा के पास, तो बाबा क्या करता है, हमको दिखाता है, अरे बच्चा तुम तो देखो ना कितना सुंदर, देखो फरिश्ता स्वरूप तुम्हारा, तुम्हें ऐसा बनना ना, तुम तो देवता ऐसे बनने वाले ना, तुम क्या कर रहे हो। जैसे माँ ने अपने बच्चे को बताती, देख तू कितना प्यारा है, देख कितना प्यारा है, फोटो दिखाती ना उसकी, तू कितना प्यारा है, तू ये क्या करता है अभी, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है ना, आजा आजा आ, तू तो सबसे अच्छा बच्चा है, तो किसी की मानता नहीं है बेटा, कि तू अपनी माँ की मान लेता है। 60 साल का लड़का हो गया, मैं जैसे 60 साल का हो गया, मेरी माँ 84 साल की है, तो आज भी मेरी माँ मुझे कोई कहे तो मेरे को क्या लगता है, जैसे मेरी माँ जो मुझे बताती है तो माँ मुझे छोटी बन की बातें याद दिलाएगी, मैं छोटा बच्चा ही बन जाऊं। वही बात आपको, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मिलके आपको सूक्ष्म वतन माना उस पे आपको अनुभव कराते अपनी गोद में और आपको परिवर्तन करते, ठीक है, आपके सामने लक्ष्य रख देते हैं, ये तुम्हारा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप था बच्चे, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम ऐसा फरिश्ता बनोगे, फिर ऐसे देवता बनोगे, ठीक है। तो ये है सूक्ष्म वतन। मुकेश कुमार समझ में आया, ये कौन करेगा, विजुलाइज नहीं करना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ये इसमें निरंतर चलते रहे, निरंतर चलते रहे, अंदर चलता ही रहे, श्वासों श्वास चलता रहेगा, तो हमारा क्या होगा, तब हमारे अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, तो बुद्धि बार बार हमको अपना अनादि स्वरूप अनुभव होगा, बार बार आदि स्वरूप अनुभव होगा, दूसरे का भी दिखाई देगा, है ना, उसका बुरा स्वरूप दिखाई नहीं देगा, कोई क्रोध भी कर रहा है तो भी उसका लगेगा अनादि स्वरूप दिखाई देगा, आदि स्वरूप दिखाई देगा, और फिर उसमें हम ऐसे व्यवहार करेंगे, इसको बोलते हैं पवित्रता। हमारा सबसे लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा, किसी से भी हमारा लगाव खत्म नहीं रहेगा, झुकाव रखना भी, किसी से लगाव रखना भी अपवित्रता है, किसी की तरफ झुकना, उसके संकल्प चलना, यह भी अपवित्रता है, किसी के प्रभाव में आना, किसी भी देहधारी के प्रभाव में आ जाना, यह भी अपवित्रता है। जिससे लगाव झुकाव प्रभाव है, उस जब योग करने बैठेगा वही याद आ जाएगा। टकराव रखना भी अपवित्रता है किसी से, क्योंकि जब टकराव वाला भी आपको याद आ जाएगा, उससे लगाव नहीं रखो, पालना करो। जैसे बैंक वाला है, आपने बैंक से लोन लिया, है ना, डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर हैं, आप इतने सारे दिल वाले आते हो, तो हमारा आपसे लगाव है क्या, हमारे आपसे प्यार है, हम आपकी एक एक की ध्यान रखेंगे, दवाई देंगे, शेयर करेंगे, आपके दुख दर्द को समझेंगे, पर लगाव किसी से भी नहीं है, झुकाव भी किसी के प्रति नहीं है, कि मैं दो आदमी अपने से दो को ढूंढ लूं, बार बार उसको ही मैं देखता रहूं, उसकी ध्यान रखूं, बाकी का ध्यान ही ना करूं। तो लगाव ना झुकाव ना प्रभाव किसी के, ना किसी से टकराव, सब बराबर है, है ना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, सबसे बराबर है होना चाहिए ना। तो इसको बोलते हैं पवित्र, राइट। और फिर किसी में किसी बात में क्या क्यों कैसे होना भी अपवित्रता है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, ये भी ड्रामा के अंदर था ना, अगर क्या क्यों कैसे आया ये भी अपवित्रता है, इससे व्यर्थ संकल्प पैदा होंगे, बैठोगे बाबा को याद करने, संकल्प शुरू हो जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे ब्राह्मणों के भी ऐसे करते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या, तो वो ये क्या क्यों कैसे भी अपवित्रता है। और फिर ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, जैसे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मचारी माना, जैसे ब्रह्म तत्व में रह के हम आत्माएं आपस में एक दूसरे से आचरण, एक दूसरे को आत्मा देखती है ना ब्रह्म तत्व में रह के, ऐसे हमारे दुनिया में भले पति पत्नी हो भले बच्चे हो, हमारा यही व्यवहार आपस में होना चाहिए कि हम आत्मा है, आत्मा भाई भाई। जब ये हमारी बनेगी ना हमारी, इसको बोलेंगे संपूर्ण पवित्र। ब्रह्माचारी माना हर चीज में अपने आप को ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो कि ब्रह्मा, मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, मैंने ये किया। क्योंकि हमको ब्रह्मा के परिवार में जाना है ना, किसके परिवार में जाना है, ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है, उसके पूर्वज, वो हमारे पूर्वज है, हमें उनके परिवार में जाना है ना, तो क्या होना चाहिए, किसको किससे कंपेयर करोगे, हमारे मापदंड कौन सा है हमारे पास, ब्रह्मा बाबा। तो उस हमारा हर संकल्प हर बोल हर कर्म वैसा होना चाहिए। तो जितना ये पवित्रता की डिग्री, मैंने पवित्रता की डिग्री बताई, जितनी ये पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी उतना बाबा से क्या होता जाएगा, संबंध गाढ़ा होता जाएगा। क्योंकि मेरा बाप क्या है, एवर प्योर है, और मुझे मैं बन रहा हूं ना। तो जितना ये डिग्री बढ़ाते जाओगे, मतलब पवित्रता का मतलब क्या है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये इसे कहते हैं पवित्रता। जैसे मीरा कहती है मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उसको कृष्ण दिखाई देता था, दूसरों को दिखाई नहीं देता था, वो डांस कर रही है कृष्ण के साथ, दूसरे कहते पागल है, वो रियल में कृष्ण के साथ डांस कर रही है, उसको दिखाई दे रहा है। तो जब हमारी ऐसी पवित्रता आ जाएगी तो हमको शिव बाबा दिखाई देगा, हमको ब्रह्मा बाबा दिखा, ब्रह्मा बाबा दिखाई देना माना बाप दादा की गोद का अनुभव होगा। दूसरे भले कहे हमें पागल है कोई बात नहीं, किंतु हमें दिखाई देगा, हमें हर बात बाबा पहले टच कर देगा, हर चीज की डायरेक्शन दे देगा, टचिंग पावर कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर बढ़ जाएगी। सुना, तब ऐसी स्थिति हमें बनानी है, बनानी कि नहीं बनानी है, क्या ख्याल है, बनानी नहीं बनानी है। तो सूक्ष्म वतन, रियल सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये ऐसे नहीं कि मैं मुरली भी नहीं सुनता, कभी कभी मुरली सुनता हूं, मुरली में सो भी जाता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, खा पी में भी सब गड़बड़ कर लेता हूं, पकोड़े भी खा लेता हूं, समोसे भी खा लेता हूं, और फिर कहूं मैं सूक्ष्म वतन में गया, बाबा ने मुझे प्यार किया। बाबा ऐसे कैसे प्यार करेगा, आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे करेगा ना, नहीं। मैं गुस्सा भी कर लेता हूं, बाबा ने मुझे प्यार कर लिया, बाबा कैसे प्यार करेगा, बाबा की डायरेक्शन तो नहीं थी गुस्सा करना है। सुना, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा ना, प्रैक्टिकल दिखाई देगा ना, तो बाप समान बनेंगे, है ना, इसे कहेंगे पवित्रता। जब ऐसी पवित्रता आएगी तो असोचता बाप, हमारा बाप क्या है, असोचता, तब हम असोचता बाप से कंबाइंड हो जाएंगे। मेरा बाप ना पास की सोचता है ना भविष्य की सोचता है, वर्तमान में रहता है हमेशा, जो संकल्प ड्रामानुसार होना तो वही आता है। अभी जब मैं असोचता बाप से कंबाइंड, पवित्रता के बगैर हम असोचता बाप से कंबाइंड नहीं हो सकते। तो ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति, शांति माना ना पास का चिंता ना भविष्य की चिंता, असोचता बाप से कंबाइंड होके हम संकल्प करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, है ना, सैर करते हैं, और ऐसे ही बाप से कंबाइंड होकर सो जाते हैं। इसको बोलते हैं शांति, कोई चिंतन चलता ही नहीं, कोई विचार चलता ही नहीं। रीटा बहन आपके साथ वाली बहन, सुना आपने, तो ऐसी शांति, तो शांति का अर्थ समझना चाहिए कि जब भी शांति शब्द है ना ओम शांति, तो ओम शांति माना असोचता बाप से कंबाइंड होके सोचना, देखना, सुनना, पढ़ना, जैसे मेरा बाप कुछ सोचता नहीं, मुझे भी कुछ सोचना नहीं, ना पास्ट ना भविष्य, बस वर्तमान में बाबा के साथ का अनुभव करना है बस। तो जिसको बोलते हैं शांति, इस शांति में खो जाओ, इस पवित्रता में खो जाओ, इस पवित्रता को अनुभव करो, फिर ऐसी जब शांति आ गई तो रूहानी प्रेम, रूहानी प्रेम का क्या अर्थ है, रूहानी प्रेम का क्या अर्थ है, जब मैं ऐसे बाप के साथ कंबाइंड रहने लगता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा बाबा सबको स्वीकार कर रहा है, सबको बराबर देखता है, मेरी उससे नहीं बनती पर बाबा उसको भी बराबर सब कुछ दे रहा है, मेरे से भी ज्यादा दे रहा है। तो बाबा मेरा कैसा है, बाबा के प्यार की परिभाषा क्या है, अंग्रेजी में हम कहते हैं अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से सम्मान के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकार करके उसकी इस सातों एनर्जी से पालना करता है, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों से पालना करता है। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, ये नहीं सोचता कि दादी है, ये दादी है, ये छोटा, ये अभी ज्ञान का बच्चा है, नहीं, जिसके जो कर्म है साक्षी होकर देखता है, किसी की माफ नहीं करता है, सबके साथ साक्षी है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, किसी के साथ भी करता है पार्शियलिटी? ब्रह्मा बाग के साथ पार्शियलिटी की? ब्रह्मा बाग रथ उधार पे लिया, किंतु क्या पार्शियलिटी की उसके साथ? नहीं, खांसी अपने आप मैनेज करो, अपनी तकलीफ को अपने आप मैनेज करो, है ना। हाँ, सूली से कांटा हो जाता है ना, राइट। तो मतलब ऐसा हमको, ऐसा रूहानी प्यार हमने अंदर पैदा कर, हमारे घर में जो भी है, मैंने कल भी बताया था, हमारे घर में जो भी है, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, जिनसे हमारा रोज संबंध संपर्क, हमारे बॉस हैं, नीचे काम करने वाले कुलीग्स हैं, साथी हैं, वो सब हमारे अपनी किस्मत के, हमारे ड्रामा के अनुसार हमको मिले, उनके हर रोल को हमें बहुत प्यार से, सम्मान के साथ स्वीकार करना है और बिना शर्त के स्वीकार करना है। कोई इंसल्ट भी कर रहा है, कोई बात नहीं, इंसल्ट क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है बताओ? एबीसी बताया ना, डी माना, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करे, हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब। माना पिछले जन्म में मैंने किसी से 10 रुपया उधार लिया तो 100 साल के बाद कितना ब्याज हो गया? कल मैंने बताया था, परसों, 100 साल के बाद ब्याज 4,18,35,040 रुपया हो गए। वही आदमी आपके पास, वही जिससे इसका उधार लिया, 10 रुपया नहीं दिया था, वही आदमी आपका बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, दोस्त बन के आएगा, पड़ोसी बन के आएगा, या माता पिता भाई बहन बन के आएगा। वो उसको आपको 4 करोड़ तो दे, 4 करोड़ 10 रुपया देना ही, 10 रुपया देना, मूलधन देना पड़ेगा, इतना ब्याज भी देना पड़ेगा। अब किसी को आपने 100 साल पहले 2 गाली दी थी, इस जन्म में वो आपका पति बन के आ गया या साथी बन के आ गया, सेंटर में 7 वाली बहन बन के आ गई, है ना, तो क्या होगा? आप कितना ही उसके लिए करोगे, क्या करेंगे वो? आप सुबह शाम आपको गाली ही देंगे, ठीक है? आपने से 2 ही गाली दी थी, किसी की आपने 2 बार इंसल्ट की थी 100 साल पहले, अब क्या करेंगे वो 100 साल के बाद? क्या करेंगे? आपकी सुबह आप सब कुछ करते रहो, उसकी महिमा करते रहो, बहन जी आप बहुत अच्छी, बहन जी बहुत अच्छी, वो सुबह शाम आपके इंसल्ट ही करते रहेंगे, नहीं? तो ये हमारा है गीता ना, 100 साल पहले तुम्हें हमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो प्यार तो है ना, तभी तो कर रहे हैं, हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं ना। एक गीत ये वाला भी है, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, फिर भी क्या करेंगे? तो भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना, हिसाब किताब पूरा करके छोड़ेंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना कि हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हमारी इंसल्ट कर रहा है, धोखा दे रहा है, गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे ही अपने कर्म है, कोई भी दोषी नहीं है। आपकी बीमारी के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, आपकी तकलीफ के लिए कोई दोषी नहीं है, आपके अपने कर्म दोषी है। तो इसलिए इसको गहराई से जितना आप एबीसीडी को घोटते जाओ, मुरली को घोटते जाओ, उतना आपकी पवित्रता बनती जाएगी, उतनी शांति पैदा होती जाएगी, उतना रूहानी प्यार पैदा होता है। जो हुआ अच्छा, प्यार क्यों होता है, नफरत क्यों होती है, गुस्सा क्यों आता है, ये मैंने इसके लिए इतना किया, ये ऐसा क्यों करता है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, उस पर गुस्सा आता है। जब आप हरेक को अनकंडीशनली, कोई कुछ भी करे उसको स्वीकार करेंगे हरेक को, तो आपका उसे कहते रूहानी प्यार, तब आपकी ब्लॉकेज खुलेगी। जिसने आपके खिलाफ गलत किया है, सबसे पहले उसको माफ कर दो, ठीक है? वो एक्चुअली वो ब्लॉक नहीं बैठा, वो याद भी बैठा है अंदर आपकी, वो आर्टरी के अंदर ना, आर्टरी रोक के वही बैठा हुआ है, उसने कहा मैं रोकता हूं, देख कैसे खून जाएगा, मैं रोकता हूं इसको, है ना, वही छाती में दर्द करता है, ठीक है, उसी से पसीना आता है, उसे चोकिंग होती है अंदर, है ना। सुना, उस आदमी को बुद्धि से निकाल दो, उसको साथ प्यार से बात करो, प्यार से व्यवहार करो, टेलीफोन कर लो, भाई हम दोनों आत्मा भाई भाई है, है ना, तो मेरी गलती को माफ कर देना। सुना किशनलाल जी, किशनलाल सुना आपने, तब आपका ब्लॉक निकलेगा। अगर आपको छह जगह ब्लॉक है, छह जने बैठे हैं आपकी हार्ट की आर्टरी में, ठीक है, आठ ब्लॉक है तो आठ जने बैठे हैं आपकी आर्टरी में। सुना, तो उन आदमियों को निकालो अंदर से ना, वो प्यार करोगे तो निकलेंगे, नहीं तो बैठे, वो कहते ठीक है मैं भूखड़ताल पे बैठा हूं, यही बैठा रहूंगा, या तो मैं नहीं या तो तुम नहीं, है ना। सुना, तो बाईपास करा लो एंजियोप्लास्टिक, मैं उसके आगे आगे जाके बैठ जाऊंगा, एंजियोप्लास्टिक के आगे, बाईपास के आगे जाके बैठ जाऊंगा, तुम करा लो। सुना आपने, क्या समझे मणिधर जी, कितनी बार एंजियोप्लास्टिक बाईपास करो तो कुछ भी नहीं होने, बाईपास टाइम पास हो जाएगा, है ना। सुना चंद्रगोपाल जी, है ना, तो बाईपास टाइम पास हो जाएगा तो ठीक नहीं होने वाला है ना। करोगे हरदेव भंडारी जी, स्टेंट से कुछ नहीं होने वाला, फिर बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पक्का पक्का ऐसे बन के दिखाओ, सबको एक्सेप्ट करो, प्यार के सागर बन जाओ, है ना। प्यार ही प्यार बेशुमार, प्यार मतलब एक्सेप्टेंस, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मैं जो हूं जैसी हूं तुम्हारी तुम्हारा हूं, ये जो फीलिंग है ना। नहीं तो क्या होना पड़ेगा, शादी करने से पहले क्या करते हैं, मेडिकल चेकअप हुआ करेगा ना, कि अभी इसका चेकअप करो, मानसिक चेकअप करो, मेडिकल चेकअप करो, फिर उसके बाद शादी करेंगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहले लेके आओ, है ना। तो क्या होगा, कभी किसी की शादी ही नहीं होगी कभी किसी की। अभी क्या करते हैं, तो टेस्ट थोड़ी ना कराते हैं पहले, भाई शक्ल देखी ठीक है, व्यवहार देखा, चलो भाई ठीक है शादी कर देते, गुण मिलाते, गुण तो पंडित जी ऐसे ही मिला देते हैं, हजार से पांच हजार रुपए तो गुण तो अपने आप ही मिल जाते हैं, है ना, नहीं है जी। और सारे गुण अवगुण ही, सारे गुण अपोजिट ही होते हैं, आज की पति पत्नी के गुण किसी के भी पति पत्नी के गुण आपस में सेम नहीं होते, इसलिए नरक की निशानी है, पति जाता है पश्चिम में, पत्नी जाएगी पूर्व में, है ना, पति जाए दक्षिण में, पत्नी जाएगी उत्तर में, है ना, और बच्चे जाएंगे दक्षिण, बच्चे कोई और डायरेक्शन में चले जाते हैं, बच्चे सीधे सीधे सिंगापुर जाते हैं, है ना, वो तो उनको पश्चिम उत्तर की बात ही नहीं है ना, अमेरिका सीधे ही जाते हैं। तो पता है आज प्रॉब्लम ये वाली हो रही है, सुना आपने, क्या ख्याल है दीपक भाई, तो अभी करेंगे। तो ये प्यार, ऐसा प्यार पैदा करो तो ब्लॉक खोलने, तो और ऐसे जब तक संसार में हरेक को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तब तक सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकते। एक माँ, एक बच्चे, पांच छह बच्चे हो एक माँ के, और एक बच्चा दूसरे बच्चे की पिटाई करके फिर माँ की गोद में घुसना चाहे, माँ कभी घुसा अब गोद में रखेगी उसको, नहीं रखेगी। सबको जो प्यार करता है, सबको स्वीकार करता है, ऐसा बच्चा ही अपने माँ बाप की गोद में का अनुभव, सूक्ष्म वतन में माँ बाप की गोद, तो तब माँ बाप की गोद का अनुभव, तब उसको बाप प्यार करता है, तब उसको बाप उसकी तरह देखता है, वो बाप की तरह देखता है, ठीक है। तो जब ऐसा, जब हमने रूहानी प्यार पैदा कर लिया, तो हमारी बुद्धि और मन कैसा हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, लाइट लाइट भर गई बुद्धि और मन में, तो ये लाइट की बॉडी, ये लाइट की बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगी माना, तब हमारे अंदर क्या होगा, तब सूक्ष्म होता है, तब हम बाप दादा की गोद का अनुभव करेंगे, है ना, बाबा की गोद या बाबा के सामने सूक्ष्म होता है, बाबा बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा, ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगे बाप में मुझे बाबा मिल गया, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो जब ये पाना था सो पा लिया, जब ऐसी फीलिंग आई सर्व प्राप्तियां, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो ये संतुष्टता, संतोष आ गया, संतोष आ गया तो इच्छा मात्र अविद्या, तो ऐसी फीलिंग, इसमें विचार चलने बंद हो जाते, ऐसी फीलिंग, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, जब ऐसी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी तो फिर ऐसा आनंद, आनंद माना अब आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाएगी, लवलीन हो जाएगी, मैं अपने मन बुद्धि से, मेरे अंदर विचार चलने बंद हो जाएंगे और मैं बाबा के साथ, बाबा मेरे साथ, हम एक दूसरे में जैसे समा गए, ऐसी फीलिंग। एक्सटेसी होगी, रोमांच खड़े हो जाएंगे। असली आनंद महसूस करके देखो कभी ना, एक आर्टिफिशियल आनंद बनाते हैं हम लोग ना, ऐसे ही अपनी मर्जी का आनंद बनाते हैं, वो नहीं बनाओ। रियल आनंद की अनुभूति, चलते फिरते जब सारा दिन अभ्यास करोगे ना तो आनंद पैदा होगा, तब थायराइड की बीमारी ठीक होगी। अत्यंत सुख की अनुभूति से लीवर आपका ठीक, हाजमा ठीक हो जाए, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, पेट में कब्जी ठीक हो जाएगी, पेट में दर्द नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, है ना। सुना, ऐसी अत्यंत सुख की अनुभूति से होगा, ऐसा नहीं वैसे खुशी बस। देखा है वो नाटक, वो होता है ना, वो होता है ना जो चार पांच जोक सुनाए, मुस्क हंस लिए, चलो जी पेट ठीक, उससे पेट ठीक नहीं होगा, एसिडिटी ठीक नहीं होगी। कौन आता ना वो टीवी पे, कोई आता है ना कपिल शर्मा, उसको देखने से कुछ नहीं होगा, उसके तो और ही पेट में दर्द हो जाएगा आपको। तो अतिंद्रिय सुख, अंदर का सुख चाहिए, आनंद से हार्मोन, डायबिटीज तब ठीक होगी आपकी। तो ऐसा अंदर से, जब ऐसा आनंद आ जाएगा तो आपको क्या होगा, तब सत्य को प्रकट शक्ति आएगी। ऐसे आनंद की अनुभूति करने के लिए आपको क्या होगा, जिसने एक बार ऐसा आनंद अनुभव कर लिया अब वो कभी गलती नहीं करेगा, सत्य को परख लिया, उसका विवेक विजडम क्या हो गई, अब उसके अंदर विजडम आ गई, अब वो कभी गलती नहीं करेगा, अब उसका विवेक ईश्वर जैसा हो जाएगा, अब वो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति दिव्य हो जाएगी, दिव्यता पे आधारित हो जाएगी, उसमें दैवी गुण भर जाएंगे निर्णय शक्ति में। अब ऐसा आदमी क्या करेगा, विस्तार को सार में लेगा, विस्तार को सार में माना पहाड़ जैसी बात को भी क्या बना, राई बना देगा, मतलब पहाड़ बना, ये दुनिया जो है देह और देह की दुनिया पहाड़ जैसी है, मन बुद्धि इसमें फंस जाता है, तो मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से समेट, विस्तार इस विस्तार से समेट के आत्मा की दुनिया, आत्मा परमात्मा की दुनिया में बुद्धि लग जाएगी, मन बुद्धि वहां लग जाएगी। इसको बोलते विस्तार को सार में लाना, पहाड़ को राई बना देना, है ना। और फिर जब ऐसी ऐसी मन बुद्धि वहां लगनी शुरू होगी तब समेटने की शक्ति, माना मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन हो जाएगी, इसे कहते हैं समेटने की शक्ति। जब ऐसी समेटने की शक्ति आएगी तो क्या होगा, करंट आनी शुरू हो जाएगी, तब फील होगा मैं बिंदु हूं, बाबा बिंदु है, यही यही ज्ञान है, यही सत्य है, बिंदु का बिंदु से कनेक्शन, करंट अंदर आएगी, पवित्रता माना मैं बिंदु, हम सब बिंदु, हमारा बाप बिंदु, है ना, जो बीत गया उसको बिंदु, है ना। शांति माना मैं बिंदु, हम सब बिंदु, बाप बिंदु, शांति है, जो बीत गया बिंदु, जो होने वाला बिंदु, रूहानी प्यार माना बिंदु बिंदु बिंदु, है ना, अतिंद्रिय सुख माना बिंदु बिंदु, है ना, आनंद माना बिंदु ही बिंदु, शक्तियां माना हर शक्ति क्या है, बिंदु, हर शक्ति क्या है, बिंदु, तो सातवें एनर्जी कुछ और नहीं, बिंदु ही है, है ना। तब बिंदु ये है बिंदु, तब तब विक्रम विनाश होना शुरू हो जाएगा, तब परमधाम में पहुंच जाएंगे, है ना। जब परमधाम में वैसी ऐसी बिंदु की स्टेज आएगी तो फिर कोई भी गाली देवे, इंसल्ट करे, फील ही नहीं होगा, सहन ही सहन हो जाएगा, फिर समाने की शक्ति आएगी, समाने अरे जिसने जो दिया अच्छी बात है, इस हल्के हल्के और ही हल्केपन की फीलिंग, कोई गाली देगा हमें लगेगा फूल चढ़ा रहा है ना, इंसल्ट कर रहा है फूल चढ़ा रहा है, हल्के और ही हल्के महसूस हो जाओगे। सुना गोपाल दास, है ना, ऐसा सुना किशनलाल जी, समझ में आ रही है, तो फिर आपके अंदर ऐसी महसूसता आएगी, फिर सामना करने की शक्ति, आप कोई समस्या से डरेंगे नहीं, तूफान तूफान लगेंगे, और फिर सहयोग करने की शक्ति आएगी। जब आठों शक्तियां आ जाएंगी तो सहन, तो आपके अंदर सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा, जब सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा तो आपकी ज्वालामुखी स्टेज आ जाएगी, जिसको हाइड्रोजन बम कहते हैं ना, हाइड्रोजन बम। एटम बम में क्या होता है, एटम बम में हम फिशन करते हैं, फिशन समझते हैं, हम एटम को तोड़ते हैं, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, और वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, एटम को तोड़ा जाता है, उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको उसको एटम बम कहते हैं, उससे बहुत लोग मर जाते हैं। हाइड्रोजन बम में हम क्या करते हैं, फ्यूशन करते हैं, फ्यूशन में ना एटम का एटम से जोड़ देते हैं, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। तो आत्मा परमात्मा के प्यार में जब समा जाती है, आत्मा परमात्मा के प्यार में, ये हाइड्रोजन बम बन जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन योग, हाइड्रोजन बम वाला योग, ने सारे विक्रम विनाश ऐसे हो जाते हैं जल्दी से ना। अभी मोमबत्ती योग छोड़ देना है, कौन सा योग करना है, हाइड्रोजन बम वाला योग करना है ना। पर उसके पहले एटॉमिक बम वाला योग चाहिए, एटॉमिक बम वाला ना, देह और देह की दुनिया से फिशन करना है, देह और देने के लिए दुनिया से अपनी मन बुद्धि को अलग करना है। ये इसमें ही बहुत एनर्जी पैदा होगी। जैसे ही आप आत्मा, मैं आत्मा देह और देह की दुनिया से अलग हूं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, ठीक है। और देह और की दुनिया, देह और देह की दुनिया आपकी बुद्धि से जल जाएगी, है ना, सब खत्म हो जाएगा। फिर प्यार रहेगा, लगाव नहीं रहेगा, मोह खत्म हो जाएगा, प्यार रहेगा, केयर रहेगी, रूहानियत रहेगी, वो खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर आपका फिर हाइड्रोजन बम, जब आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हो जाएगी ना, कंबाइंड स्थिति, बीज रूप स्थिति, तो वो है हाइड्रोजन बम, ज्वालामुखी स्टेज, बीज रूप स्टेज, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति। सुना सेकेंड लाइन में आपके साथ वाली में आइए, यहाँ वो वाली में तो सुना आपने। तो ये जो है आपको, आप हाइड्रोजन बम में भी सो गए क्या बात, कोई बात, कोई हर्जा नहीं। तो इतनी अपनी ताकत आनी चाहिए, है ना, क्या ख्याल है, बातें समझ में आएगी, ऊपर से गई कि अंदर से गई, अंदर गई नहीं गई, है? तो अंदर से ऐसे गहराई से इसको, ये जो है ज्ञान योग, वंडरफुल ज्ञान योग है, पता है आपको, मतलब वैसे दुनिया में ज्ञान कहीं है नहीं, है ना, इतनी गहराई, इतनी अनुभूति, पर समझ के बगैर, गहराई के बगैर आपको अनुभूति नहीं हो सकती। जितनी ज्ञान की गहराई होगी उतनी योग की गहराई अनुभव करो, नहीं तो योग भी ऊपर ऊपर होगा, ज्ञान भी ऊपर ऊपर, और जब तक ज्ञान की महीनता में नहीं जाओगे महान नहीं बन सकते। ज्ञान की महीनता में जाने से ही हम महान बनते, राइट। तो इस कितनी गहराई में उतर जाओ, इतनी गहराई में उतर जाओ, फिर देखो क्या होगा। फिर हमारी आखिरी जो बाबा कह रहे हैं, हमारी स्टेज बने, विक्रम विनाश हो और हम प्रत्यक्ष हो, तब ऐसी स्थिति बनेगी। मैं समझता हूँ, समझ गया ना, सातों एनर्जी। फिर बस हम शाम को हम थोड़ा आगे लेंगे, है ना, ओके। तो अभी आप जाके हम सब लंच करेंगे, लंच में आपको बताया था कैसे, वो आपको खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च, पहले नींबू डाल लेना खीरे पर, और किस पर, शिमला मिर्च पर। तो एक खीरा खाना, खीरे का पीस खाना, फिर उसके बाद शिमला मिर्च का पीस खाना, फिर नींबू का, फिर उसका टमाटर का पीस खाना, फिर खीरा खाना, फिर शिमला मिर्च, फिर इसी तरह से खाना, और चबा चबा के खाना, जल्दी जल्दी नहीं खाना, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा, है ना, अच्छे से चबा के खाना। और उसके बाद पहले इस सब, पहले जाते ही सब गोल लेना, है ना, पूरा सभी बहनों ने सब गोल लिया, नहीं लिया, सभी को लेना है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को, हमारा पेट में कब्जी नहीं है, कब्जे के लिए नहीं दे रहे हैं, आपके रिसेप्टर्स अंदर से जाम हुए पड़े हैं, है ना, वो उसमें सेंस नहीं है, वो सेंस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर से वो रिसेप्टर्स क्या कर, इस सब बोल क्या करता है, जो आपको सुबह अंकुरित देते हैं, अंकुरित और दलिया देते हैं, आते हैं हमारी अंदर से, ऐसे होती है, ऐसे आ रही होती है ना, चारी होती है, ऐसे होती है, रिसेप्टर गहरे होते हैं, गड्ढों में रिसेप्टर होते हैं, वो सेंसर होते हैं, सेंस करते हैं कितना कितना ग्लूकोज चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फैट चाहिए। और हमने क्या किया, अपने रिसेप्टर्स में पराठे पकौड़े समोसे खा कर करके उसमें जमा दिया है, तली चीजें खा के उसमें जमा दिया, टोलियां खा खा के वो उसके अंदर गड्ढे, सब रिसेप्टर खराब हो गए। अभी हम क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह अंकुरित खिलाते ना आपको, अंकुरित और बीन्स की सब्जी खिलाते हैं, अंकुरित बीन्स दलिया खिलाते हैं, उसमें उसमें लंबे लंबे रेशे होते हैं, वो झाड़ू का काम करते हैं। सुबह हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो सुबह सुबह झाड़ू लगाते, वो झाड़ू है। और फिर हम आपको इसबगोल दोपहर में देते हैं, इसबगोल क्या करता है, एक गिलास पानी में अगर हम एक, एक हम आपको इसबगोल देते हैं, छोटी आंत में जाता है, पेट में नहीं जाता है, अगर हम ऐसे पीते हैं ना, मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी जाते हैं, तो छोटी आंत में जाए, छोटी आंत में जाके उसका कॉलम बन जाता है। अगर एक गिलास पानी में आप दो चम्मच इसबगोल डाल दो, 10 मिनट छोड़ दो, पूरा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसबगोल मुंह में डाल के एकदम पी जाते हो, तो वो छोटी आंत में जाता है, पेट में नहीं जाएगा, उससे पेट नहीं भरता है, छोटी आंत में जाके कॉलम बन जाता है, और उसके पीछे खाना पेट में जाता है, पेट में जाके खाना पचता है, धीरे धीरे फिर खाना 2-3 घंटे में आगे जाता है। ये सब गोल छोटी आंत में रहता है, फिर उसके पीछे पीछे इस खाना ऐसे चलना शुरू होता है, फिर पीछे 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 आगे आगे ये सब गोल, पीछे पीछे खाना, आगे इंजन पीछे डब्बे, है ना। तो अंदर वो ये सब गोल क्या करता है, वो सारे जो भी रिसेप्टर्स हैं चमकाता हुआ जाएगा, सारे पीछे से प्रेशर पड़ता है ना, तो चमकाता हुआ सारे रिसेप्टर्स क्लीन करता हुआ जाएगा। तो ये पोचा है ना, ये सब बोल क्या है, पोचा। तो फिर शाम को फिर पोचा लगाते हैं, तो एक बार झाड़ू और दो बार 24 फुट लंबी आंत है, कौन साफ करने जाएगा? आपका ब्रश है ऐसे करके अंदर साफ करेंगे क्या? यही ब्रश है ना, नहीं तो बोतल तो आप साफ करते ना, अपनी पानी की बोतल भी हॉट जो होती है ना, आपकी पानी की बोतल भी होती है, उसको भी आप ब्रश से साफ करते हो। इसमें कौन सी ब्रश लगाओगे? इसमें तो ब्रश साफ नहीं होता ना रिसेप्टर्स, तो इसलिए हमें क्या करना है, रिसेप्टर्स को साफ सुथरा करना है, चमकाना है। तो एक बार रोज झाड़ू लगानी है, दो बार क्या करना है, पोछा, तो रिसेप्टर्स हमारे साफ सुथरे हो जाएंगे और फिर एक्यूरेट काम करेंगे, है ना। फिर जितना जरूरी है उतना ही एब्जॉर्ब होगा, फालतू एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। बीमारियां अपने आप ही कम होती चलेंगी, मोटापा खत्म हो जाएगा, डायबिटीज खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म, हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, सब ठीक, गैस बनने बंद हो जाएगी। सही ढंग से कराओगे तो, और खुश रहोगे तो, सबसे बड़ी बात है सबको खुश रहना है ना, प्राण जाए पर खुशी ना जाए, है ना। मरना भी तो कैसे, मुस्कुराते मुस्कुराते जाओ, है ना। ऐसे थोड़ा ना कोई मरने का रोके रोके थोड़ा ना मरना है, हंस के नहीं, हंसते हुए मरना है, ठीक है, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते, है ना। मरने से क्या डरना है ना, ठीक है। हम जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। एक गीत है ना, कौन सी फिल्म का पता नहीं मुझे, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, ठीक है। तो सभी ऐसे दिलवाले का मतलब क्या है, चलते फिरते उठते बैठते दीपक कुमार, मुस्कुराते रहो, है ना, दिखाई देना चाहिए, दिलवालों की निशानी है मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब सामने से कोई मुस्कुराते दिखाई दे रहा है ये दिलवाला ही होगा, ऐसे ही निशानी होनी चाहिए, है ना। और मुस्कुराता चेहरा सबसे सुंदर चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है, क्रीम पाउडर वाला चेहरा अच्छा नहीं लगता है, वो तो पेंटेड लगता है ना, पेंटेड नहीं होता, तो हमें तो रियल चेहरा होना चाहिए ना। चलो एक मिनट बाबा को याद करो।